मैं आज इसी स्वदेशी के भाव को आप तक संप्रेषित करने के लिए और स्वदेश का गौरव आपके भीतर जागृत करने के लिए भैराजीव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। भैराजीव जी।
परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मैं आपसे स्वदेशी से स्वावलंबी भारत इस विषय पर संवाद करूंगा। परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसा आपको बताया, ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांवों पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। मैं आपको नाम लेके कुछ उदाहरण से बताऊं, ये अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ दिखाई देता है आपको, ये स्वदेशी के दर्शन में से निकला हुआ देश है। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं, वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। अमेरिका बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा था अंग्रेजों का, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के कारण वो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ गया और वो अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति बन गया। आप अगर हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि मात्र पिछले 200 वर्षों में अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। आर्थिक दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, उद्योग की दुनिया में, सुरक्षा व्यवस्था की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में कोई भी अमेरिका का नाम लेने वाला नहीं था आज से 200 साल पहले तक। आज अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है। आज अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीकी विकसित करने वाला देश है, सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला देश है, सबसे ज्यादा सुख समृद्धि और संपत्ति वाला देश है। ये सब पिछले 200 वर्षों में अमेरिका ने हासिल किया है, उसके पहले उनके पास कुछ नहीं था। और ये सब हासिल करने के लिए अमेरिका ने स्वदेशी नीति को अंगीकार किया है, स्वदेशी दर्शन को अंगीकार किया है और अपने को सारी दुनिया में स्थापित किया है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, आज से लगभग 100 साल पहले तक जापान का कोई नाम लेवा नहीं था दुनिया में। जापान भी गुलाम रहा है दुनिया में कई देशों का। जापान तो ऐसा एक अद्भुत देश है जो 3 बार गुलाम हुआ है। एक बार अंग्रेजों का गुलाम हुआ जापान, मुश्किल से आजाद हुआ। फिर दूसरी बार जापान गुलाम हुआ डच, पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों का मिला जुलाकर, फिर आजाद हुआ। और तीसरी बार जापान गुलाम हुआ अमेरिका का और मुश्किल से आजाद हुआ। जापान जब अमेरिका का गुलाम था तब आपको मालूम है अमेरिका ने 2 एटम बम जापान पे गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, और पूरे जापान को तोड़ दिया था अमेरिका ने, ध्वस्त कर दिया था। वो जापान पिछले 60 वर्षों में, 70 वर्षों में सारी दुनिया के सामने पूरी इज्जत और सम्मान से खड़ा है। अमेरिका के बाद दूसरा नाम अगर लिया जाता है दुनिया में तो वो जापान का नाम लिया जाता है। और ये जापान भी बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, तकनीकी महाशक्ति बन गया है, विज्ञान की बहुत बड़ी ताकत बन गया है, औद्योगिक उत्पादन में बड़ी ताकत है, व्यापार में बड़ी ताकत है जापान। आज अमेरिका की 25% से ज्यादा बड़ी कंपनियां जापान के कब्जे में है इस समय। अमेरिका भी जापान से घबराता है, अब डरता है। ये जापान पिछले 60-70 वर्षों में खड़ा हुआ है, वो भी स्वदेशी दर्शन के आधार पर, स्वदेशी चिंतन के आधार पर। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है चीन। आपको मालूम है चीन भी एक समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है, अंग्रेजों ने चीन पे भी कब्जा किया था और पूरे चीन के समाज को अंग्रेजों ने नशे में डुबो दिया था। अफीम नाम की एक नशीली वस्तु होती है, अफीम के व्यापार से अंग्रेजों ने पूरे चीन को नशे में डुबो दिया था। लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में जाकर अफीम बेची थी और चीन के नौजवानों को अफीम पिला पिलाकर नशेड़ी बना दिया था और वो पूरा चीन डूब गया था नशे में। वो चीन को खड़ा होने में बहुत समय लगा लेकिन चीन खड़ा हुआ। 1949 तक अगर चीन के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि चीन भिखारी देश था। उनको खाना खाने के लिए जो चावल चाहिए वो उनके पास नहीं होता था, उनके उद्योग उनके पर्याप्त नहीं थे, व्यापार उनका अच्छा नहीं था 1949 तक। और 1949 माने आज से लगभग 60-61 साल पहले तक विदेशी कर्जे में डूबा हुआ था, पूरी तरह से ध्वस्त और अस्त व्यस्त देश था चीन। लेकिन चीन में एक बड़ा नेता पैदा हुआ, जैसे हमारे देश में मैं बार बार कहता हूं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी की अलख जगा रहे हैं, ऐसे ही चीन में एक नेता पैदा हुआ, उसका नाम था माओ ज़ेडोंग। उसने पूरे देश को स्वदेशी के रास्ते पर डाल दिया और चीन के लोगों के दिल दिमाग में स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी दर्शन ऐसे भर दिया कि पूरा चीन पिछले 60 साल में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और आज चीन पूरी दुनिया को अनाज खिला रहा है, पूरी दुनिया को भोजन करा रहा है, सारी दुनिया के बाजारों में 25% से ज्यादा सामान चीन का भरा हुआ है, निर्यात इतना चीन के तरफ से हो रहा है कि सारी दुनिया के बड़े बड़े देश अब कांप रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो महाशक्ति है ना, वो चीन से घबरा रहा है इस समय। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा चीन की यात्रा पर गया तो बराक ओबामा से चीन के पत्रकारों ने पूछा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए चीन की यात्रा पे क्यों आए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ज्यादातर चीन नहीं जाते हैं, दुश्मनी मानते हैं वो अपनी चीन से। तो बराक ओबामा ने कहा कि ये भविष्य का ताकतवर देश है, हो सकता है आने वाले समय में ये अमेरिका को भी परास्त कर दे औद्योगिक उत्पादन में, व्यापारिक उत्पादन में, हो सकता है आने वाले समय में ये तकनीकी और विज्ञान में भी हमसे बहुत आगे निकल जाए, इसलिए दोस्ती रखनी चाहिए भविष्य के दादाओं से, ताकतवर लोगों से, इसलिए मैं चीन की यात्रा पे आया हूं। और उसने एक और बात कही मजे की कि अब तक तो ऐसा होता था कि अमेरिका दुनिया को कर्ज बांटता था और अमेरिका की संस्थाएं दुनिया को कर्ज देती थी। पहली साल सन 2009 में ऐसा हुआ कि अमेरिका ने चीन से कर्ज मांगा है अपने को जिंदा रखने के लिए और 780 अरब डॉलर का कर्ज चीन ने अमेरिका को दिया है जिंदा रहने के लिए। आप सोचो कि 60 साल में कोई देश इतनी ताकत से खड़ा हो सकता है, वो हुआ है स्वदेशी दर्शन से, स्वदेशी चिंतन से। ऐसी कहानी में 70 देशों की आपको सुना सकता हूं जिन्होंने पिछले 200 वर्षों में, 400 वर्षों में, 500 वर्षों में स्वदेशी का दर्शन अपने यहां लाया, स्वदेशी का दर्शन अपनी नीतियों में अपनाया, स्वदेशी का दर्शन उन्होंने अपने व्यापार और उद्योग में लाया, तकनीकी में लाया, विज्ञान में लाया और वो देश स्वावलंबी होकर खड़े हो गए और सारी दुनिया के सामने सीना ठोंक कर कह रहे। मैं आज से 50 साल पहले की एक छोटी बात बताता हूं कि 50 साल पहले दुनिया में सबसे घटिया माल अगर कहीं का होता था तो वो जापान और चीन का होता था। लोग हंसते थे कि ये जापानी माल है माने सबसे घटिया है, ये चीनी माल है ये सबसे घटिया है, ऐसा कहा जाता था 50 साल पहले। अब दुनिया में 50 साल में इतना अंतर आया है कि सबसे अच्छा माल अगर है तो जापानी माल है, ये कहा जाता है पूरी दुनिया में, और उसके बाद सबसे अच्छा माल है तो चीनी माल है, ये दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा क्वालिटी में, तकनीकी में, हर तरह से। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं देशों में, 50 वर्षों में, 60 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, 100 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और कई देश तो हमारे पड़ोस में है, मलेशिया नाम का देश है, वो तो 24-25 साल में खड़ा हो गया अपने पैरों पर। अभी परम पूजनीय स्वामी जी अरब देशों की बात कर रहे थे, ये अरब देश तो 40 साल में खड़े हो गए, 40 साल पहले तो भुखमरी के शिकार थे, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था और आज सारी दुनिया का ऐशो आराम, सुख सौंदर्य और दौलत इनके पास इकट्ठी हो गई है। तो ये सभी देश दुनिया में अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि वो ताकत से खड़े हुए स्वावलंबन के साथ और स्वदेशी के आधार पर। इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं, तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। भारत स्वाभिमान जो गठित हुआ है उसके कई संकल्प हैं, उनमें से सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत माता को विश्वगुरु बनाना है, विश्व के सर्वोच्च पद पर स्थापित करना है और हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। तो दुनिया का सिरमौर अगर भारत बनेगा, विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति भारत बनेगा, तो ये भी स्वदेशी के ताकत से बनेगा, स्वावलंबन की ताकत से बनेगा। इस दृष्टि से मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं थोड़ी पुरानी बात करके अपनी आज की बात कहूंगा। पुरानी बात माने हमारे इतिहास की बात थोड़ी देर में करूं कि भारत कभी दुनिया में विश्व की महाशक्ति था, विश्व का सिरमौर था, ये हमारे दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के आने के समय तक और अंग्रेजों के आने के पहले तक ये देश सारी दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति था, महाशक्ति था। और आपको सुनकर हैरानी होगी क्योंकि हमें तो इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, ये सब दस्तावेज अभी खोजे जा रहे हैं तो मिल रहे हैं। हमें तो इतिहास में ये बताया गया कि भारत हमेशा से कमजोर देश था, भिखारी देश था, गरीब देश था, सपेरों का देश था, लुटेरों का देश था, डकैतों का देश था, पूरा आकंठ दरिद्रता में डूबा हुआ देश था। ये तो अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का विकास कर दिया, तो हम अंग्रेजों को इस दृष्टि से देखने लगे और अंग्रेजों ने ये इतिहास हमारा हमको बनाकर पढ़ा दिया और दुर्भाग्य से ज्यादातर पढ़े लिखे लोग उसी इतिहास को मानने लगे। अंग्रेजों ने भारत के बारे में जो कहा भारत की इतिहास की किताबों में, उसके बिल्कुल उलट उन्होंने कहा भारत के बारे में इंग्लैंड की इतिहास की किताबों में। इंग्लैंड में जो इतिहास की किताबें छपी, इंग्लैंड के अलावा स्कॉटलैंड में जो इतिहास की किताबें छपी और अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखी, उनमें भारत के बारे में बिल्कुल अलग बात है। और भारत में अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा और जो किताबें छपवाई वो बिल्कुल उल्टी बात है। भारत में अंग्रेजों की जो बनाई गई इतिहास की किताबें छपी और हमने पढ़ी है, वही सब इतिहास की किताबें, और उसी के आधार पर भारत के इतिहासकारों ने इतिहास की किताबें लिख दी है। उनमें यही बताया गया है कि गरीबी में डूबा हुआ, बेकारी में डूबा हुआ, तंद्रा में डूबा हुआ, आलस्य में डूबा हुआ, पाखंड में डूबा हुआ, विलासता में डूबे हुए राजा, इस तरह का भारत, हमेशा से अंधेरे में, अंधकार में रहने वाला भारत, इस तरह की हमारी चित्र और तस्वीर मन पे अंकित हो गई है। लेकिन जो अंग्रेजी दस्तावेज हैं और अंग्रेजी पुस्तकें हैं उनको देखें तो बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। और अंग्रेज खुद कहते हैं इस बात को कि भारत में जब वो प्रवेश करने के लिए आए तो यहां की दौलत देखकर हैरान हो गए। एक मोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि अगर यही सच था कि भारत गरीबी में डूबा हुआ, अंधकार में डूबा हुआ, दरिद्रता में डूबा हुआ देश था, तो अंग्रेज 250 साल रहे क्यों यहां पर? झक मार रहे थे क्या? गरीबों की झोपड़ियों में कोई 250 साल रहता है क्या? दरिद्रता में डूबे हुए इलाके में कोई 250 साल रहा करता है क्या? अंधेरे में डूबे हुए इलाके में कोई 250 साल गुजार सकता है क्या? पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपनी फना कर सकता है कोई 250 साल ऐसे इलाके में जहां कुछ भी नहीं था? तो यह मोटी सी बात है कि अगर हम सब इतने गरीबी, भुखमरी, बदहाली के ही शिकार थे तो अंग्रेज 250 साल रहे क्यों फिर हमारे देश में? क्यों नहीं आकर चले गए? और 250 साल अंग्रेजों की कहानी क्या कहें, मुगल आकर हमारे देश में क्यों रहे, क्यों उन्होंने साम्राज्य स्थापित किए? विदेशी हमलावर आए इस देश में 7वीं-8वीं शताब्दी के बाद, वो क्यों आए? जब हम गरीब थे, भुखमरी के शिकार थे, बदहाली के शिकार थे, तो कोई विदेशी क्यों आएगा हमारे यहां? ये बात समझने की है कि अगर हमारी सारी खराबियां ही खराबियां हम में थी तो इतने सारे विदेशी आकर हजारों वर्षों से इस देश में कैसे रह गए। ये बात जब आप समझना शुरू कर देंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कोई किसी दूसरे इलाके में कब जाता है और कोई दूसरे इलाके में कब रहता है, और एक दो साल नहीं, सौ सौ दो दो सौ साल तक रहता है, ढाई ढाई सौ साल तक रहता है। ये तभी जब उन विदेशियों का यहां आने पर कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो, जब उनका यहां आने पर उनकी कोई मतलब सिद्ध होती हो, जब उनका यहां आने पर उनकी कोई अपनी सिद्धि होती हो। और वही था, अंग्रेज यहां आए थे, बहुत खुशहाल देश था ये देश। अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत के बारे में 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, और जिन इतिहासकारों ने ये 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं वो सब एक स्वर से मानते हैं कि भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। भारत के बारे में अंग्रेज इतिहासकारों ने और अंग्रेजी खोजक लोगों ने जो दस्तावेज तैयार किए हैं उनमें से दो तीन बातें कहकर ये बात को मैं समझाना चाहूंगा। जब अंग्रेज आए और यहां उन्होंने देखा तो भारत के बारे में अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो उन्होंने लिखा कि भारत तो दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला देश है, और भारत के व्यापार और उद्योग की स्थिति का बखान करना हो तो एक ही आंकड़ा आपको देता हूं। अंग्रेजों ने भारत के बारे में सर्वे किए, सर्वेक्षण किए, और ये बताया कि दुनिया के बाजार में जो सामान बिक रहा है उसमें 33% सामान सिर्फ भारत का बना हुआ है। आज मैं आपको तुलना के लिए बात कह रहा हूं तो समझ में आ जाए, दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान चीन का बिकता है, दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान लगभग अमेरिका का बिकता है। अमेरिका एक देश है, चीन एक देश है, दोनों महाशक्तियां हैं, और आज से 175 साल पहले तक दुनिया के बाजार में 33% सामान अकेले भारत का बिकता था। इसका माने तुलना अगर हम करेंगे तो भारत चीन से ज्यादा ताकतवर था, और कौन से चीन से, 200 साल पुराने चीन से नहीं, आज के चीन से। आज का चीन जो दुनिया में महाशक्ति बना हुआ है उसका कुल सामान दुनिया में 25% बिक रहा है, आज से 175 साल पहले दुनिया में कुल सामान जो बिकता था उसमें 33% हमारा था, तो आज के चीन की ताकत से बड़ी ताकत तो हमारी थी, आज के अमेरिका से बड़ी ताकत तो हमारी थी। और जिस समय हमारा व्यापार दुनिया में चलता था 33%, उस समय अमेरिका का माल पूरी दुनिया में 1% भी नहीं बिका करता था। तो अंदाजा लगा सकते हैं उद्योग कितने बड़े रहे होंगे, व्यापार कैसा होता होगा। और जब उद्योग और व्यापार इतना बड़ा था कि 33% हम निर्यात करते हैं, तो निर्यात तो वही देश किया करता है जिसके पास उत्पादन अधिक होता है। इसको एक सरल भाषा में मैं समझाना चाहता हूं। हम हमारे घर में खीर बनाते हैं और पड़ोसी को खिलाते हैं, कब, जब अपना पेट भर चुका होता है तब। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी को खिलाने के लिए खीर बनाते हैं, खीर तो अपने खाने के लिए बनाई जाती है, और वो जरूरत से ज्यादा बन जाती है, हमारा पेट भर जाता है तो पड़ोसी को खिलाई जाती है। मतलब क्या है, किसी देश का निर्यात कब होता है, जब उस देश की जरूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद सामान बच जाए तब निर्यात किया जाता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 175 साल पहले तक हमारी जरूरतों का सारा सामान हम बनाते थे, बनने के बाद वो बच जाता होगा तो उसको दूसरे देशों में हम निर्यात कराते थे, और निर्यात 33% होता था पूरे दुनिया के बाजार का। इसका माने हम उत्पादन करते होंगे, कुछ माल बनाते होंगे, तो उत्पादन के आंकड़े हैं भारत के अंग्रेजों के दस्तावेजों पर से आधारित कि भारत का उत्पादन पूरी दुनिया में 43% होता था, पूरी दुनिया में। और इस समय अमेरिका, चीन और जापान तीनों को मिला दें तो तीनों का कुल उत्पादन पूरी दुनिया में 45% है। माने तीन देशों के बराबर का उत्पादन भारत में आज से 175 साल पहले तक था। दुनिया के, विश्व के उत्पादन में 43% हम करते थे, और आमदनी के स्तर के जो आंकड़े हैं भारत के, 27% आमदनी सारी दुनिया की भारत के कंट्रोल में होती थी। माने भारत 27% दुनिया के बाजार की आमदनी अपने पास लेता था। आमदनी भी हमको होती थी, निर्यात भी हम करते थे, उत्पादन भी होता था, और उत्पादन इतनी चीजों का होता था जो दुनिया के बाजार में धड़ल्ले से बिकती थी। एक दो चीजों के बारे में बताता हूं, हम स्टील बेचते थे दुनिया के बाजारों में। स्टील के बारे में सारी दुनिया में आज ये गलतफहमी है कि स्टील जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का उत्पाद है, माने आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 साल में स्टील बनाकर दिया है। लेकिन भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में तो 3000 साल से स्टील का उत्पादन होता रहा और सारी दुनिया में हम बेचते रहे वो स्टील, और हमारे स्टील से जहाज बनते रहे पानी के, और वो जहाज दुनिया की कंपनियां खरीदती रहीं और उससे व्यापार करती रहीं। स्टील हम बेचते थे, कपड़ा हम बेचते थे। कपड़े का इतना अद्भुत उत्पादन इस देश में रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी कपास हम पैदा करते रहे और वो कपास से कपड़े बनते रहे। ढाका का मलमल, सूरत का मलमल, खंडवा के आसपास के इलाके का मलमल, मध्य प्रदेश में मालवा एक क्षेत्र कहलाता है इंदौर उज्जैन के आसपास का, वहां का मलमल दुनिया में प्रीमियम प्राइस पे बिकता था। माने हम जो कीमत बोल देते थे उस कीमत पे हमारा कपड़ा बिकता था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत का कपड़ा दुनिया के बाजार में जब बिकने के लिए जाता था तो उस समय तौल कर कपड़ा बिकता था, आज कपड़ा मीटर से बिकता है, लंबाई से बिकता है। आज से लगभग 150-200 साल पहले तक कपड़ा तौल से बिकता था, 1 किलो कपड़ा, 2 किलो कपड़ा, 5 किलो कपड़ा। तो कहा जाता है दस्तावेजों में कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था, उतने ही वजन के बराबर का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था, और सोने के वजन के बराबर हमारा कपड़ा बिकता था। हम कपड़ा बेचकर सोना लाते थे इस देश में, और 3000 साल तक ऐसे ही बिकता रहा। 3000 साल हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया, 3000 साल हमने लोहा बेचकर सोना कमाया, 3000 साल हमने जहाज बेचे पानी के सोना कमाया, 3000 साल हमने औषधियां बेची दुनिया के बाजार में और सोना कमाया। क्यों? क्योंकि कारण एक था, उस समय सोना जो था ना विनिमय की वस्तु थी। जैसे आज हम विनिमय की वस्तु के रूप में करेंसी को देखते हैं ना, नोट रुपए का हो या डॉलर का, स्टर्लिंग पाउंड का हो या येन का, किसी भी तरह का नोट जो आजकल चलता है ना विनिमय के लिए, हम कोई चीज खरीदते बेचते हैं तो नोट के आधार पर। आज से 150-200 साल पहले तक दुनिया में चीजें खरीदी और बेची जाती थी सोने के आधार पर, चांदी के आधार पर, हीरे जवाहरात के आधार पर। दूसरे देशों में हमारा जो माल बिकता था वहां से सोना चांदी हीरे जवाहरात हम इकट्ठे करके भारत में लाते थे, और वो हीरे जवाहरात सोना चांदी 3000 साल तक हम इकट्ठा ही करते रहे क्योंकि हम बेचते ही रहे। हमने कभी किसी से कुछ नहीं खरीदा क्योंकि भारत अंग्रेजों के आने के पहले तक संपूर्ण स्वावलंबी देश था। दूसरे किसी देश से हम एक छोटी वस्तु भी नहीं खरीदा करते थे, जो थे हम बेचा करते थे। हम खरीदने वाले देश कभी नहीं रहे क्योंकि जो देश उत्पादन किया करते हैं, जो देश उद्योग चलाया करते हैं, वो देश बेचा करते हैं, और जो देश खाली व्यापार किया करते हैं वो खरीदा करते हैं। उद्योग और व्यापार का सबसे बड़ा अंतर है, हम उद्योग चलाने वाले देश हैं, हम उत्पादन करेंगे और बेचेंगे। दूसरे कई देश व्यापार करने वाले देश हैं, वो खरीदेंगे और बेचेंगे। जैसे नाम लेके उदाहरण दूं, सिंगापुर नाम का एक देश है, हांगकांग नाम का एक देश है, ताइवान नाम का एक देश है, ये सब व्यापार करने वाले देश हैं। उत्पादन ज्यादा नहीं है उन देशों में, वो कहीं से कुछ खरीद लेते हैं दूसरे को बेच देते हैं, यहां से कुछ खरीद लेते हैं तीसरे को बेच देते हैं, तीसरे से कुछ खरीद लेते हैं चौथे को बेच देते हैं। और अरब देश भी यही करते हैं, तेल को छोड़कर अरब देशों में कुछ उत्पादन नहीं है, हर चीज को वो दूसरों से खरीद कर तीसरे को बेचा करते हैं। आपने दुबई का नाम सुना है ना, दुबई के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात का केंद्र बन गया दुबई। दुबई में कुछ उत्पादन थोड़ी होता है तेल को छोड़कर, वो कोई चीज भारत से लेते हैं, कोई चीज चीन से लेते हैं, कुछ और कहीं से ले लेते हैं और ले जाके दूसरे देशों को बेच देते हैं। तो हम व्यापारी देश नहीं रहे, हम उत्पादक देश रहे, हम माल बनाने वाले देश रहे। तो माल जो बनाया करते हैं वो बेचा करते हैं, और जो माल की इधर उधर ले जाके ट्रांसपोर्टेशन किया करते हैं वो व्यापार किया करते हैं। तो दुनिया में कई देश व्यापारी देश हैं, लेकिन भारत खाली व्यापारी देश नहीं है, औद्योगिक देश रहा। तो उद्योग चलते रहे, 36 तरह के उद्योगों के तो दस्तावेजी प्रमाण अब तक मिल चुके हैं। कुछ और प्रमाण अगर हम ढूंढेंगे तो सैकड़ों किस्म के और उद्योगों के प्रमाण मिल जाएंगे आने वाले समय में। तो ये सारे उद्योग चलाकर दुनिया भर में व्यापार करके हम सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए। 3000 साल हमने ये व्यापार किया, उसमें इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात इस देश में आ गया कि हमने सोने के मंदिर बना लिए, मंदिरों में हीरे जड़वा दिए, मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़वा दिए। आपने सुना है सोमनाथ का एक मंदिर सोने का मंदिर था, जिसको लूटने में महमूद गजनवी को 17 साल लगे थे। अब एक ही मंदिर को लूटने में किसी को 17 साल लगे तो कल्पना कर सकते हैं ना कितनी संपत्ति होगी उस मंदिर में। महमूद गजनवी के समय में लिखी गई एक पुस्तक है, वो पुस्तक ये बताती है कि मंदिर की दीवारों में जड़े हुए हीरों को निकालने का काम 17 साल तक वो करते रहे और तब भी जाके पूरे हीरे नहीं निकाल पाए वो मंदिर की दीवारों से। तो जिस देश के मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़े जाएं, जिस देश के मंदिरों की मूर्तियां सोने की बनाई जाएं, जिस देश के मंदिरों के मंडपम सोने के हों, छत्रपम सोने के हों, जिस देश के मंदिरों के किवाड़ सोने के हों, खिड़कियां सोने की हों, अंदाजा लगा सकते हैं उस देश के घर कैसे रहे होंगे। अंग्रेजों के जो इतिहासकार रहे हैं वो बताते हैं कि भारत में जब वो घूमने के लिए आते थे तो किसी घर में खाना खाने के लिए जाते थे तो वो कहते हैं कि घरों में जाते थे तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा मिलता था। ये जो अंग्रेजों का एक बड़ा अधिकारी रहा ना टीबी मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा पद्धति बदली, कानून पद्धति बदली, न्याय पद्धति बदली, वो खुद कहता है कि वो जब भी भारत के किसी व्यक्ति के घर में गया सोने के सिक्कों का उसने ढेर देखा और जब उसने पूछा कि ये सोने के सिक्के कितने हैं तो जो भारतीय व्यक्ति उसने कहा गिने नहीं है क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है गिनने की, हम तो तौल कर रखते हैं सोने के सिक्के, तौल पूछो 10-20 किलो 50 किलो 100-200 किलो तो पता चल जाएगा, गिनने की आदत नहीं है हमको। गिनी तो वो चीज जाती है जो थोड़ी होती है, ज्यादा चीजें गिनी नहीं जाती हैं। मैं आपके घर में एक कल्पना करके बताता हूं, इससे आप अंदाजा करिएगा। आपके घर में गेहूं का ढेर लगा है और मैं ये कहूं कि गेहूं के कितने दाने हैं जरा बताओ, आप कहेंगे क्या मूर्खता का सवाल है, कितने किलो गेहूं है ये बताओ, क्विंटल कितना है, टन में कितना है, किलो में कितना है, वो गेहूं तो आप बता दोगे। मैं ये पूछूं दाने बता दो गिन के तो आप कहोगे ये तो संभव नहीं है। चने का ढेर लगा है आपके घर में और मैं कहूं कि चना बता दो, एक एक दाना कितना चना है, 10,000, 20,000, 50,000 चने के दाने, आप कहेंगे ये संभव नहीं है। चने का किलो बता सकते हैं, 10 किलो है, 20 किलो है, 100 किलो है, 500 किलो है। तो जब सोने के सिक्के जरूरत से ज्यादा हो जाते हों और गिनने की संभावना खत्म हो जाती हो तब वो तौल कर रखे जाते हैं। तो अंग्रेज इतिहासकार बताते हैं, और ये बात एक अंग्रेज नहीं कह रहा है, ये दो अंग्रेज नहीं कह रहे हैं, 200 से ज्यादा अंग्रेज इतिहासकार ये कह रहे हैं अपनी अपनी इतिहास की किताबों में और दस्तावेजों में कि भारत के घरों में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर रहता है, क्योंकि समृद्धि और संपत्ति बहुत है। तो ऐसा देश भारत रहा, सोने का देश, चांदी का देश, हीरे जवाहरात का देश, मोती माणिक पन्नों का देश, इसलिए सारी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी रहीं और इसलिए भारत के बारे में अंग्रेजों ने एक उपमा दी कि ये सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है। तो ये सोने की चिड़िया मतलब सोने से भरपूर, चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक से भरपूर देश रहा, ऐसा देश था। अगर ऐसा देश था तो संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी ही रहा होगा, उसके अलावा ये देश बन नहीं सकता ऐसा। तो उसकी खोज जब हम लोग करते हैं आजकल और आगे भी करते रहेंगे तो पता चल रहा है कि इतना स्वदेशी और स्वावलंबन इस देश में रग रग में भरा हुआ था कि ये देश अद्भुत बना। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूं कि भारत का ये जो स्वावलंबन और स्वदेशीपन था ये आया कहां से। तो ये आया हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से। अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटकर अगर हम देखें तो एक थी नगरीय अर्थव्यवस्था और एक थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मूल में थी और नगर की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हुआ करती थी। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो गांव हमारे संपूर्ण स्वावलंबी हुआ करते थे और नगर हमारे गांव के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। मतलब सीधा सा ये है कि गांव में उत्पादन होता था और नगर में जाकर वो बिका करता था, नगरों में व्यापार होता था और गांव में उत्पादन होता था। हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो थोड़े हिस्से में नगर की अर्थव्यवस्था थी और बड़े हिस्से में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर थोड़ा इतिहास आप पढ़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास सारी दुनिया में अनोखा और अद्भुत इतिहास है, जो ये बताता है कि भारत में शुरू से नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है। दुनिया के देशों में नगरीय सभ्यता का विकास कई कई सौ साल के बाद हुआ है, लेकिन भारत के बारे में सारी दुनिया के इतिहासकार अब ये मानने लगे हैं कि नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इतिहास की किताबों में, तो पता चलता है कि बहुत सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे किस्म के नगर इस देश में बसाए गए थे और उन नगरों में अतिरिक्त उत्पादन का सामान आकर बिका करता था जो गांव से आता था। तो गांव थे प्राथमिक उत्पादन की इकाई और नगर थे उस उत्पादन को खपत कराने वाले। गांव कैसे हुआ करते थे? जिन अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन किया है और जिन अंग्रेज शासकों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा है, दोनों के आधार पर मैं बात करता हूं आपसे। कुछ अंग्रेज ऐसे आए जिन्होंने भारत की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। उनमें से एक अंग्रेज था, उसका नाम था डलहौजी, जिसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं। ऐसे ही एक अंग्रेज था विलियम वेंटिंग, जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा तार तार कर दिया। तो जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा, उन्होंने भारत में क्या देखा गांव में, और जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन और अभ्यास किया इतिहासकार के रूप में, उन्होंने क्या देखा भारत के गांव में, तो वो मैं उनके ही शब्दों में सुनाता हूं। बस हिंदी में करूंगा, उनका अंग्रेजी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में सुनाऊंगा। एक अंग्रेज इतिहासकार लिख रहा है भारत के गांव के बारे में। वो ये कह रहा है, भारत के बहुत सारे गांवों में गया, अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो पहला एक वाक्य लिखता है गांव के बारे में कि भारत के गांव में बाहर से सिर्फ एक चीज आती है और वो है नमक। फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ कोटेशन है, उसका मैं हिंदी कर रहा हूं। वो ये कह रहा है कि भारत के गांव में बाहर से बस एक ही चीज आती है, वो है नमक, और बाकी सब चीजें गांव से बनकर शहरों में जाती हैं, नगरों में जाती हैं। माने कहने का मतलब ये है कि भारत के गांव अपने उत्पादन में इतने स्वावलंबी हैं कि वहां हर चीज पैदा होती है, वहां कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं होती है। बाहर से बस एक ही चीज लाई जाती है, वो नमक, क्योंकि नमक भारत के हर गांव में पैदा नहीं होता। और ये सच्चाई है, आप जानते हैं भारत में हर गांव में नमक पैदा नहीं होता और हो नहीं सकता। नमक पैदा होने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है भगवान की बनाई गई व्यवस्था के आधार पर, प्रकृति के आधार पर नमक का बनना, और एक व्यवस्था है मनुष्यों के द्वारा नमक का बनाया जाना। भगवान के आधार पर और प्रकृति के आधार पर जो व्यवस्था है नमक की, वो ये कि ये मिट्टी है ना, जैसे परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं ना, इस मिट्टी में सब कुछ है, इस मिट्टी में लोहा है, इस मिट्टी में तांबा है, इस मिट्टी में सोना है, इस मिट्टी में जस्ता है, इस मिट्टी में बॉक्साइट है, इस मिट्टी में एल्युमिनियम है, इस मिट्टी में गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, मटर है, तेल है, सब कुछ है। इसी मिट्टी में नमक भी है, और मिट्टी का नमक समय के काल के प्रवाह में पहाड़ बनता रहता है, पत्थर बनता रहता है, और वो फिर हम अपने उपयोग के लिए लेते रहते हैं। तो कई स्थानों पर भारत में नमक के पहाड़ होते हैं। अब दुर्भाग्य अपने देश का ये है, अफसोस अपने देश का ये है कि जितने नमक के पहाड़ इस देश में होते थे, वो सारा इलाका पाकिस्तान में चला गया। लाहौर सुना है आपने, ये लाहौर के आसपास जब आप घूमेंगे, कराची के आसपास जब आप घूमेंगे, इस्लामाबाद के आसपास जब आप घूमेंगे, और पाकिस्तान का एक हैदराबाद इलाका है, भारत में एक हैदराबाद है, एक पाकिस्तान में भी है, तो ये लाहौर, कराची, सिंध, हैदराबाद, ये इलाके में बड़े बड़े नमक के पहाड़ हैं। लाहौर के आसपास तो सबसे ज्यादा है। कभी लाहौर भारत का अंग था, ये तो अंग्रेजों की कुटिलता की नीति से और भारत के कुछ नेताओं के कुर्सी प्रेम के कारण पाकिस्तान बन गया, वरना पाकिस्तान बनने का कोई कारण नहीं था। आपको सुनकर हैरानी होगी, एक इतिहास की जानकारी मैं देना चाहता हूं। जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा उनको मिला नहीं, और जिन्होंने कभी मांग नहीं की उनको जबरदस्ती दे दिया। तो पाकिस्तान लोगों ने नहीं मांगा, जिन लोगों ने मांगा उनको नहीं मिला, और जिन्होंने कभी मांग नहीं की पाकिस्तान की उनको दे दिया। पंजाब सिंध बलूचिस्तान के इलाके के मुसलमानों ने कभी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ये तो बंगाल और बिहार के कुछ मुसलमानों ने, जो जिन्ना की पार्टी के मेंबर थे, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने कह दिया कि हमको पाकिस्तान चाहिए। तो बंगाल और बिहार को तो पाकिस्तान मिला नहीं, पाकिस्तान मिल गया पंजाब सिंध और बलूचिस्तान और उस इलाके के लोगों को जिन्होंने कभी मांगा नहीं। तो ये पाकिस्तान तो बना है, लोगों की मांग पे नहीं बना, कुछ लोगों के कुर्सी प्रेम के कारण और अंग्रेजों की कुटिलता और चालाकी भरी नीति के कारण बना। तो दुर्भाग्य अब हमारा यह है कि हमारे नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान में चले गए, और काफी कुछ नमक आजकल वहां से आता है। तो और भी भारत में कुछ इलाके हैं, लेकिन छोटे से इलाके हैं जहां पहाड़ में नमक है। तो मिट्टी बनी, भगवान ने बनाई, हजारों साल में ये मिट्टी बनती है, और उस मिट्टी में हजारों साल में पहाड़ बनते हैं, और उन पहाड़ों में हजारों साल में नमक के पहाड़ बनते हैं। तो एक नमक तो पहाड़ों से आता है, जिसको आप काला नमक कहते हैं, जिसको आप सेंधा नमक कहते हैं, जिसको आप उपवास का नमक कहते हैं, ये तो पहाड़ों से आता है। और दूसरा नमक है जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, वो समुद्र के पानी को इकट्ठा करके उस पानी को सूरज की धूप में तपाकर सुखाकर बाष्प बन के पानी उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। तो नमक एक ऐसी चीज है जो भारत के गांव में आया करती थी बाहर से, बाकी कोई वस्तु भारत के गांव में नहीं आया करती थी, ऐसा अंग्रेजों के 200 इतिहासकार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। कुछ नहीं आता था, सब भारत के गांवों में होता था, गेहूं चना चावल दाल मटर। और एक अंग्रेज इतिहासकार ने तो बड़ी मेहनत की है कि भारत के एक एक गांव में क्या क्या होता था उसकी सूची बनाई है। तो आप हैरान हो जाएंगे, एक एक गांव में 2,000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती थी। गेहूं चना चावल दाल मटर, तो ये तो उंगलियों पे गिने जाने वाले नाम है ना, ऐसी 2,000 से ज्यादा वस्तुएं भारत के अधिकांश गांवों में पैदा हुआ करती थी। और गांव कितने थे इस देश में, लगभग 7,50,000 के आसपास गांव थे अंग्रेजों के आने के पहले। क्योंकि भारत कितना बड़ा था अंदाजा है आपको, पूरा बांग्लादेश भारत का अंग था, पूरा पाकिस्तान भारत का अंग था, और पाकिस्तान के आगे तक भारत की सीमाएं लगा करती थी अफगानिस्तान तक। तो भारत में लगभग 7.5 लाख गांव थे, हमारे करीब 1.25 लाख गांव बंटवारे के चक्कर में भारत से कटकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए। आज हमारे देश में 6,38,365 गांव रह गए हैं, क्योंकि 1.25 लाख गांव हमारे बंटवारे में चले गए। और इन गांव में उत्पादन की 2,000 चीजें जब हुआ करती थी, उन्हीं चीजों से हमारे देश में उद्योग चला करते थे। आपको ये बात तो समझ में आती ही होगी, क्योंकि आप में से कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे, कि मूल उत्पादन जो होता है, जिसको आधुनिक अर्थशास्त्र में कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, जिससे उद्योग चलते हैं, जैसे कपास का उत्पादन मूल उत्पादन है, उसको आधुनिक भाषा में हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट कपास। जैसे गेहूं का उत्पादन मूल उत्पादन है, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। चने का उत्पादन मूल उत्पादन है। हमारे देश के गांव में मूल उत्पादन होने वाली 2,000 से ज्यादा वस्तुएं थी। अब उनका संशोधन और प्रोसेसिंग करके शहरों में सामान जाने के लिए तैयार होता था। तो गांव में उत्पादन का बड़ा भारी तंत्र था। गांव में कपास से लेकर हर तरह की चीज पैदा होती थी। गांव में कपास होती थी, कपास का सूत बनता था, सूत का कपड़ा बनता था, कपड़ा बाजारों में बिकता था, शहर के बाजारों में बिकता था, यूरोप के बाजारों में बिकता था। इसी तरह गांव में रेशम होती थी, रेशम के उत्पादन से सूत बनता था, उस सूत से रेशमी कपड़ा बनता था, वो रेशमी कपड़ा दुनिया भर के बाजारों में बिका करता था। इसी तरह से गांव में गेहूं चना चावल दाल आदि होते थे अनाज के रूप में, और ये अनाज गांव के लोगों को खाने के लिए तो पर्याप्त थे ही, शहर वालों को भी इसी में से मिला करता था। इसी तरह से गांव में जो खदान होती है खनिज की, वहां से लोहा निकलता था, लोहे का अयस्क निकलता था, तांबे का अयस्क निकलता था, चांदी का अयस्क निकलता था, सोने का अयस्क भारत के कुछ क्षेत्रों में निकलता रहा, कर्नाटक में खासकर कुछ गांवों में सोने का अयस्क निकलता रहा है, आज भी थोड़ा बहुत निकलता है। तो चांदी है, सोना है, लोहा है, तांबा है, आप अगर सूची बनाएंगे ना, लोहा, चांदी, तांबा आदि आदि, ऐसे 90 उत्पाद हैं जिनको हम खनिज पदार्थ कहते हैं। 90 तरह के खनिज भारत के लगभग गांव में ही निकलते हैं, गांव की सीमाओं में निकलते हैं, और इन खनिजों के आधार पर उद्योग चलते थे और सारे देश में और दुनिया में उनका माल बिकता था। इसी तरह से भारत के जंगल सारे के सारे गांव के और गांव समाज की संपत्ति थे। जंगलों में सैकड़ों किस्म के फल और हजारों किस्म की जड़ी बूटियां निकलती रही, और भारत के गांवों में उनकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके, शहर में थोड़ी ज्यादा प्रोसेसिंग करके दुनिया भर के बाजारों में बिकती रही। तो गांव की अर्थव्यवस्था को थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, संकेत में कह रहा हूं कि हर तरह की चीज गांव में पैदा होती थी। याद रखना आप, 2000 वस्तुएं भारत के गांव में थी, जिनमें 90 खनिज, और अनाज का अगर गिनना शुरू करें तो सैकड़ों किस्म के अनाज, और उसके अलावा बनने वाला कपड़ा, बनने वाली रस्सी, बनने वाली सुतली, ये सब गांव में होता था। और ये सारा काम जो गांव में होता रहा, इसको करने के लिए लोग कौन थे? हमारे देश में कारीगर लोग हुआ करते हैं, वो गांव समाज के सबसे अभिन्न अंग थे। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 150 साल पहले तक ऐसी थी कि 18 किस्म के कारीगर सभी गांव में होते थे, सब गांव में। लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने चांदी का काम करने वाले सुनार, कपड़े को बुनने वाले बुनकर, रुई आदि कपास को सूत बनाने वाले धुनकर, तेल निकालने वाले तेली, ऐसे बांस का और लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, ऐसे 18 किस्म के कारीगर सब गांव में होते थे। और ये कारीगरी का काम करके अच्छी अच्छी वस्तुएं बना के दिया करते थे। और उस जमाने में जो अर्थव्यवस्था चलती थी ना, वो वस्तु विनिमय की थी। कारीगर काम करते हैं लकड़ी का, और कुछ वस्तु बनाते हैं, वो किसी को बेचते थे तो बदले में गेहूं मिलता था उनको, या चावल मिलता था, या चना मिलता था, या दाल मिलता था। तो कारीगर के पास अगर एक एकड़ भी जमीन नहीं है तो भी उसकी जिंदगी चलती थी, क्योंकि वो लकड़ी का कुछ भी बना के बेचेगा तो गेहूं, चावल, चना, दाल घर की जरूरत का मिल जाएगा, कपड़ा उसको घर की जरूरत का मिल जाएगा, कोई मोची है वो उसकी जरूरत का जूता बना के उसको दे देगा, बदले में उससे लकड़ी का सामान ले लेगा, कोई सुनार है उसकी पत्नी को गहने बनाकर दे देगा, बदले में उससे कुछ और ले लेगा। तो ये वस्तु विनिमय के आधार पर सभी कारीगर गांव के किसानों के आसपास इर्द गिर्द घूमते थे। किसान केंद्र में होता था, कारीगर उसकी परिधि पर होते थे। किसान जो उत्पादन कर रहा है अनाजों का, उससे दूसरी चीजों का लेन देन चलता रहता था। इसलिए इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना, वो ये है कि हर व्यक्ति के पास हर चीज होती थी। इस बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय में, सबसे बड़ी विशेषता एक ही चीज की है, हर व्यक्ति के पास हर चीज होती थी। गेहूं भी होगा, चावल भी होगा, चना भी होगा, दाल भी होगी, मटर भी होगी, कपड़ा भी होगा, जूते भी होंगे, लोहारी के काम में से निकलने वाले सामान भी, सब चीजें सबके पास होंगी, क्योंकि हर एक के पास विनिमय करने के लिए कुछ ना कुछ सामान था। तो ऐसे कारीगरों पर आधारित, किसानों पर आधारित बहुत खूबसूरत गांव की व्यवस्था इस देश में चला करती थी। और एक बात बताऊं कि भारत में अंग्रेजों ने बहुत अध्ययन किया है गांव की न्याय व्यवस्था पर और गांव की चिकित्सा व्यवस्था पर, तो पता चलता है कि भारत की सारी न्याय व्यवस्था ग्राम पंचायत आधारित हुआ करती थी। गांव पंचायतें लगा करती थी और उनमें बड़े से बड़े फैसले हुआ करते थे, और ऐसे पंचायतें लगा करती थी, एक गांव की पंचायत, पांच गांव की पंचायत, 10 गांव की पंचायत, 20 गांव की पंचायत, झगड़ा जितना बड़ा पंचायत उतनी बड़ी, ये मूल सिद्धांत होता था। झगड़ा जितना छोटा पंचायत उतनी छोटी। और गांव में ये जो सरपंच और पंचों की व्यवस्था होती थी, ये पूरी न्याय व्यवस्था का ही हिस्सा होती थी, और उसमें सारे झगड़े सारे फैसले हुआ करते थे। और महत्व की बात ये होती थी कि उन झगड़ों और फैसलों में वादी भी संतुष्ट होता था, प्रतिवादी भी संतुष्ट होता था, क्योंकि न्याय करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होता था और वो धर्म की कसम खा के न्याय किया करता था। भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ा मैंने अध्ययन और अभ्यास किया तो एक दो अद्भुत बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत में ये जो पंचायतें चला करती थी फैसले करने के लिए, सबसे महत्व की बात है कि पंचायत लगती थी मंदिर में। मंदिर जो था वो पंचायत का केंद्र होता था, पंचायत जुड़ती थी मंदिर में और भगवान को साक्षी मान के वो सरपंच बैठता था धर्म की गद्दी पर और वो पंच जो है कसम खाता था, संकल्प लेता था भगवान के सामने कि मैं न्याय करूं, किसी के साथ अन्याय ना करूं और किसी से द्वेष ना रखूं, कोई भेदभाव ना करूं। ऐसी कसम खाकर, ऐसा संकल्प लेकर भगवान के सामने सरपंच बैठता था और उसके पंच बैठते थे और वो फैसला किया करते थे। तो 99% फैसले ऐसे होते थे जो वादी को भी पसंद आते थे, प्रतिवादी को भी पसंद आते थे और उन फैसलों के आगे जाने के लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सारा न्याय गांव में ही हो जाता था। और कुछ मामले मैंने अभ्यास किए कि जो बहुत क्रिटिकल होते थे, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। जयपुर के पास एक गांव है बस्सी, बस्सी गांव की पंचायत के पिछले 150 साल के रिकॉर्ड्स मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, तो उसमें मैंने पाया कि एक बार बस्सी गांव की एक पंचायत लगी, उसमें किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और हत्या करना भारत में बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है क्योंकि माना यह जाता है कि भगवान के बनाए हुए जीव हैं, किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने गलती से या जैसे भी जानबूझ के किसी की हत्या कर दी। इस मामले को सुलझाने के लिए बस्सी गांव की पंचायत 20 दिनों तक बैठी। एक दिन बैठी 3-4 घंटे, दूसरे दिन पंचायत बैठी 3-4 घंटे, 20 दिन तक लगातार पंचायत बैठती रही और जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो गया पंचायत वहां से उठी नहीं। तो ये समझ में आता है कि जो गंभीर मामले हुआ करते होंगे वो पंचायतों के द्वारा इस तरह से सुलझाए जाते थे कि गांव गांव में 20-20 दिन की पंचायतें लगा करती थी। साधारण मामले 1-2 घंटे में ही निपट जाते होंगे। तो इस तरह से पूरी न्याय व्यवस्था चलती थी और इस न्याय व्यवस्था का जो केंद्र था, ध्यान रखिएगा, वो भारत में धर्म था। और धर्म वो नहीं जो कर्म कांड वाला है, धर्म वो जिसको आचरण में हम उतार सकते हैं। और ये वो धर्म था जिसकी व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। 10 लक्षण उन्होंने बताए हैं धर्म के, वो 10 लक्षण भारत की हर पंचायत व्यवस्था में न्याय करते समय दिखाई देते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जब स्थापना की 1875 में, तो उन्होंने धर्म की परिभाषा दी और धर्म को 10 लक्षणों से युक्त बताया। और उन्होंने कहा कि ये लक्षण अगर कोई व्यक्ति रखता है या जिसमें ये धारण करता है वो ही धार्मिक है या धर्म वही है। तो वो 10 लक्षण जो मैंने देखे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिखे हुए, वो भारत की ग्रामीण व्यवस्था की जब पंचायत चलती थी या पंचायत जुड़ती थी तो वहां सब दिखाई देते हैं, पंचों में और सरपंचों में। वो कर्मकांड वाला धर्म नहीं था, वो संप्रदाय वाला धर्म नहीं था, वो धारण करने योग्य जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, इंसान को इंसान बनाए, उसके आधार पर फैसले और निर्णय हुआ करते थे। और हैरानी इस बात की होती है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत की सभी ग्राम पंचायतें लगभग इसी आधार पर चला करती। तो न्याय व्यवस्था में हम स्वावलंबी थे, उत्पादन में और उद्योग में हम स्वावलंबी थे और इसी तरह से गांव की चिकित्सा व्यवस्था चला करती थी। लगभग इस देश के हर गांव में कम से कम एक वैद्य होता था और हर 5 गांव में एक सर्जन होता था। ये 1860 तक की कहानी है भारत की। भारत के हर गांव में एक वैद्य जो जड़ी बूटियों से चिकित्सा करे और हर 5 गांव के बीच में एक सर्जन जो जरूरत पड़ने पर सर्जरी करे। और सर्जरी गंभीर से गंभीर, जैसे किसी का कान कट गया, जैसे किसी की नाक कट गई तो कान को जोड़ देना, नाक को जोड़ देना, किसी के शरीर के अंग का कोई एक बड़ा हिस्सा गल गया, सड़ गया, जल गया, उस हिस्से को दूसरे जगह से चमड़ा उतार कर ट्रांसप्लांट कर देना, जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में, वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। हर 5 गांवों के बीच में एक सर्जन था इस देश में। हड्डी जोड़ने वाले हाड़ वैद्य हुआ करते थे और वो हाड़ वैद्य तो अभी भी इस देश में दिखाई देते हैं। ऐसे बेहतरीन हाड़ वैद्य मैंने देखे हैं मेरी आंखों से कि गंभीर से गंभीर टूटी हुई हड्डी को दोनों हाथ से पकड़कर एक बार जोड़ देंगे और उसके ऊपर कोई लेप लगाकर पट्टी बांध देंगे और 20-25 दिन से लेकर 3 महीने में वो पूरी हड्डी जुड़ जाएगी। और आप एक्सरे करा लो तो हड्डी का इंच से इंच मिला लो, इतनी बेहतरीन जुड़ाई हड्डी की वो करते हैं। उनके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड का कोई सिस्टम नहीं है, एमआरआई की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाथों में ऐसी कला है, हाथों में इतना हुनर है कि पकड़ के बिठा दिया तो हड्डी का वही हिस्सा वहां बैठेगा जहां पर उसको जुड़ना है। वो एमबीबीएस नहीं है, वो एमडी नहीं है, वो बीएएमएस नहीं है, वो बीएचएमएस नहीं है, लेकिन भगवान का दिया हुआ हुनर और पुरखों से सीखी हुई कला इतनी जबरदस्त उनके हाथों में है कि हाथों से हड्डियां जोड़ते। भारत के इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि हर गांव में जो वैद्य होता था ऐसे ही लगभग हर 2 गांव में एक हाड़ वैद्य हुआ करता था, हर 5 गांव में लगभग एक सर्जन हुआ करता था, सब तरह के चिकित्सा के काम ये गांव में हो जाया करते थे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गांव से बाहर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। और बच्चों का जन्म कराना हो तो इसके लिए तो भारत में ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही है कि हर घर की मां गायनोकोलॉजिस्ट से कम नहीं रही इस देश में। मैंने ऐसी माताओं को देखा है इस देश में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, कि बच्चे का जन्म इतनी आसानी से करा देती हैं कि कोई अच्छा से अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट नहीं करा सकता उस काम। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ना उनको भी तकलीफ आ जाती है, ऐसी माताओं को मैंने देखा अपनी आंखों से बच्चों का प्रसव कराते हुए। और सब घर में लगभग ऐसी माताएं हुआ करती थी, एक घर में न मिले तो पड़ोसी के घर में तो आराम से मिला करती थी। तो बच्चों के जन्म हो या उनके दूसरे बीमारियां हो या बड़े होने पर बीमारियां हो, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्था इस देश में थी। और जिन अंग्रेजों ने भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर अभ्यास किया, जैसे एक बहुत बड़ा अंग्रेज था डॉक्टर बेंजामिन करके, एक डॉक्टर लैंकास्टर जिसने शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर अभ्यास किया, वो कहते हैं कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था देखकर तो हम अभिभूत हैं कि ऐसी सुंदर इतनी व्यवस्थित सारी चिकित्सा यहां चलती है। और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी विशेषता बताई भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर वो ये कि किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता बड़ी से बड़ी चिकित्सा कराने के लिए, क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा निःशुल्क होती है इस देश में। तो आप बोलेंगे फिर वैद्यों का काम कैसे चलता था, सर्जनों का काम कैसे चलता था, उनका भी तो जीवन होता है, रोजी रोटी उनकी भी होती है। तो पता चलता है कि गांव के सब लोग मिलकर वैद्य जी का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर सर्जन का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर हाड़ वैद्य का घर चलाते थे। माने वैद्यों को, चिकित्सकों को अपनी उपजीविका के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी, जो भी उनके घर आता था कुछ ना कुछ लेके आता था। और हमारे देश में तो कहा गया है चिकित्सक के घर जाओ, गुरु के घर जाओ और बेटी के घर जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। अब चिकित्सकों के घर इतने लोग आते होंगे तो कुछ ना कुछ लेके आते होंगे, तो उससे उनकी व्यवस्था चलती थी। बहुत अद्भुत चिकित्सा व्यवस्था रही। और उसका कारण यह था कि हजारों किस्म की जड़ी बूटियां चूंकि इस देश में गांव-गांव में होती रही, इसलिए चिकित्सा व्यवस्था स्वावलंबी रही। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था हमारी संपूर्ण स्वावलंबी थी गांव में। लगभग हर गांव में एक गुरुकुल था, कोई कोई गांव में तो 2 गुरुकुल थे, कोई कोई गांव ऐसे हैं जहां 3 गुरुकुल थे, लेकिन कम से कम एक गुरुकुल तो हर गांव में था। और गुरुकुल जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आज की तुलना में जब आप इसको समझने की कोशिश करें तो 12वीं कक्षा तक का विद्यालय, इसका मतलब था अंग्रेजों के आने के पहले का गुरुकुल। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा आज जिस विद्यालय में दी जाती है, जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, वैसे इस देश में 7,32,000 से ज्यादा गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के पहले। गांव लगभग 7.5 लाख थे और गुरुकुल 7,32,000 थे, माने एकाध कोई गांव को छोड़ दिया जाए तो हर गांव में गुरुकुल थे। और गुरुकुल के ऊपर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च विद्या के लिए कॉलेज स्तर के केंद्र थे, जिनको आज हम डिग्री कॉलेज कहते हैं और जिनको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों मिलाएं तो ऐसे 14,000 केंद्र थे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। और जिसको आज हम साक्षरता की दर कहते हैं ना, ये साक्षरता की दर 97% थी पूरे भारत में, जो आज आजादी के 60 साल के बाद, 63 साल के बाद सिर्फ 50% है। अंग्रेजों के पहले साक्षरता 97% थी। अद्भुत शिक्षा व्यवस्था थी। एक आध ही गांव में कोई मिलता था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, सबको पढ़ना लिखना आता था। जो अंग्रेज आए हैं इस देश में, वो अपने देश से हमारी तुलना करते हैं इतिहास की किताबों में। कई अंग्रेज कहते हैं कि हमारे देश में तो सबसे पहला स्कूल 1868 में शुरू हुआ लंदन में, लेकिन भारत में तो उससे हजारों साल पहले से 7,32,000 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं। वो कहते हैं हमसे ज्यादा शिक्षा में भारत ऊंचा। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी थे, गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषय बहुत अद्भुत हुआ करते थे। आपके मन में एक गलतफहमी ये हो सकती है कि गुरुकुल का माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, गुरुकुल का माने खाली वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते होंगे। गुरुकुल हमारे देश में इंजीनियरिंग के भी हुए हैं, जहां सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन। गुरुकुल हमारे देश में एस्ट्रोफिजिक्स के हुए हैं, जो आज का आधुनिकतम शास्त्र माना जाता है। गुरुकुल हमारे यहाँ केमिस्ट्री के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ सर्जरी के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेडिसिन के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेटलर्जी के हुए हैं। मेटलर्जी जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, धातु शास्त्र कहते हैं, सारी दुनिया में आधुनिकतम शास्त्रों में ये माना जाता है, उसके हमारे यहाँ सैकड़ों गुरुकुल रहे हैं। तो 18 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल थे और हर गुरुकुल में संस्कृत, वेद और उपनिषद ये अनिवार्य था। इसलिए वेद सबको मालूम था, उपनिषद सबको आते थे और वेद के अलावा जो दूसरे शास्त्र हैं उनका भी ज्ञान सबको होता था। उसके साथ में एस्ट्रोफिजिक्स आती थी, एस्ट्रोनॉमी आती थी, मेटलर्जी आती थी, ये सब आधुनिकतम विद्याएं हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती रही। शिक्षा हमारी संपूर्ण स्वावलंबी थी, चिकित्सा हमारी स्वावलंबी थी, कृषि उत्पादन हमारा संपूर्ण स्वावलंबी था, दूध उत्पादन हमारा संपूर्ण स्वावलंबी था। दूध और दही के बारे में तो भारत में आपने अभी तक सुना है कि दूध और दही की नदियां बहती थी। अब ये दूध दही की नदियां बहना तो ये मुहावरा है, मतलब ये है कि किसी को पानी मांगना हो तो दूध उपलब्ध होता था, किसी को पानी पीना हो तो मट्ठा उपलब्ध होता था, छाछ उपलब्ध होती थी। 150 साल पहले के गांव के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सबसे अद्भुत बात जो लगी कि गांव के लोग पानी तो बहुत कम पीते थे, पानी की जगह दूध पीते रहते थे, मट्ठा पीते रहते थे। और हमारे यहाँ गांव की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात रही है, दूध और मट्ठे जैसी चीजें कभी बेची नहीं जाती थी। गरीब से गरीब आदमी को उपलब्ध होती थी, वो बेची नहीं जाती थी। इसका मतलब एक ही है, हर गरीब आदमी को दूध और मट्ठा उपलब्ध होता था। मैंने मेरे बचपन में मेरी आंखों के सामने देखा है, ये तो अभी 30 साल पहले तक के भारत में दिखाई देता था। मेरी दादी को मैंने देखा है, सवेरे वो मट्ठा बिलोती थी, खूब सारा दूध होता था, दही होता था, और अपने घर के लिए रख के पड़ोसियों में वो बंटने के लिए चला जाता था, और उसके बाद भी बचता था तो जानवरों को खाने और खिलाने के लिए चला जाता था। मट्ठा बटता था, मक्खन बटता था, घी बटता था, दूध बटता था, दही बटता था, माने किसी को खरीद के खाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी अद्भुत अर्थव्यवस्था स्वावलंबन की थी। और एक छोटी सी आखिरी बात और बताऊं भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, कि श्रम का भारत में कभी भी लेन देन नहीं हुआ, मूल्य नहीं तय हुआ। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम हमेशा से अमूल्य रहा, बिना मूल्य का, जिसका मोल नहीं कर सकते आप, ऐसी चीज को अनमोल कहते हैं। भारत में श्रम हमेशा से अनमोल रहा। गांव में श्रम का विभाजन इस तरह से था कि जो काम कोई व्यक्ति अकेले स्तर पर कर सकता है वो अकेले करता था, जिस काम को करने के लिए वो अकेला समर्थ नहीं है उसको करने के लिए पूरा गांव उसके यहां इकट्ठा होता था। आप तो गांव में रहे होंगे, हम तो गांव में काफी बचपन में रहे हैं, और अभी भी भारत में उत्तर पूर्व के मैंने कई गांव ऐसे देखे हैं जहां गांव के किसी व्यक्ति को घर बनाने की जरूरत पड़े तो पूरा गांव उसको सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाए। कोई उसकी ईंट बनवाए, कोई उसका गारा तैयार करवाए, कोई ईंट चिनवाए, कोई गारा चिनवाए, घर बनके तैयार हो जाए, किसी को कोई मूल्य न देना पड़े। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको मदद की है, जब उस व्यक्ति का घर बनेगा तो ये जाके उसकी मदद करेगा। तो श्रम इस तरह से विभाजित था हमारे गांव में। सबके घर बने हैं एक दूसरे की मदद से। किसी ने घर नहीं बनाया इस देश में पैसे लगा के। इस तरह का श्रम विभाजन था। मैंने तो बचपन में देखा है कि किसी का छप्पर होता है ना, छत जिसको हम फूस की बनाते हैं, वो छप्पर किसी का डालना हो तो सारा गांव 10 मिनट के लिए इकट्ठा होता था, छप्पर चढ़ा के एक एक अपने घर में चला जाता था, छप्पर एक मिनट में तैयार हो जाता। छप्पर बनाने में गांव इकट्ठा होता था, छप्पर डलवाने में गांव इकट्ठा होता था, दीवार खड़ी करने में गांव इकट्ठा होता था, दीवार को चिनवाने में गांव इकट्ठा होता था। इस तरह से सब एक दूसरे के घर बनाया करते थे। खेत में भी ऐसा ही श्रम विभाजन था। किसी एक किसान के खेत में बुआई हो रही है तो बुआई के समय गांव के मोहल्ले के लोग उसके यहाँ आ जाएंगे और एक दिन में पूरी बुआई करके चले जाएंगे। फिर वो किसान दूसरे के यहाँ जाके उसी तरह का कर देगा, फिर तीसरे के यहाँ जाके कर देगा। तो संपूर्ण गांव के किसानों की बुआई भी ऐसे ही होती थी, कटाई भी ऐसे ही होती थी, निराई भी ऐसे ही होती थी, गुड़ाई भी ऐसे ही होती थी। ये 150 साल पहले तक व्यवस्था चलती रही। तो श्रम का विभाजन जो था, श्रम अनमोल था, उसका कोई मूल्य नहीं था और एक दूसरे की मदद हम किया करते थे। और गांव में ये जो सारे कारीगर और श्रम आधारित मजदूर थे, इनके बारे में एक अद्भुत बात पता चली, वो ये कि ये स्वावलंबी तो थे ही सब अपने जीवन में, इज्जत और हैसियत सबकी बराबर थी, सम्मान सबका बराबर था। गांव में छोटे से छोटे कारीगर का सम्मान होता था, छोटे से छोटे कारीगर का, और ये सम्मान के समय आया करते थे। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के जन्म के समय कौन कौन कारीगर घर में आएगा और क्या क्या करके जाएगा उसकी पूरी एक सूची है। सुनार आएगा, बच्चे का कान छेदन करके चला जाएगा, कान में बाली पहना के चला जाएगा और फिर उस सुनार का सम्मान घर के लोग करेंगे। फिर इसी तरह से शहद बनाने वाला आएगा, वो बच्चे की जीभ पर एक शहद की बूंद टपका के चला जाएगा, फिर उस शहद बनाने वाले का घर के लोग सम्मान करेंगे। ऐसे करके एक एक तरह से कारीगर आते। दाई आएगी, जिसको आजकल हम ANM कहते हैं ना, वो भारत में पुराने समय की दाइयां हुआ करती थी। तो दाई आएगी, बच्चे का प्रसव कराएगी, प्रसव करने के बदले में उसका जो सम्मान होगा वो घर के सब लोग मिलकर करेंगे। तो बच्चे के जन्म से लेके, और मैंने देखा और समझा, मृत्यु के दिन तक सभी कारीगरों का सहयोग और सहभाग हर एक एक छोटी घटना में। बच्चे का विवाह हो रहा है तो सब तरह के कारीगर आएंगे। मैं तो एक जगह देखकर हैरान हो गया कि गांव में सबसे ज्यादा उपेक्षित और पिछड़ा हम किसको मान सकते हैं, तो खराब शब्द है लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपको, हिजड़े। जो हिजड़े होते हैं इनको हमारे समाज में सबसे उपेक्षित माना जाता है और सबसे हेय दृष्टि से देखा जाता है आज के समय में। लेकिन 150 साल पहले के गांव में जब मैं देख रहा हूं कि हिजड़े जो है ना, और वैश्याएं, पहले हमारे गांव में वैश्याएं नहीं होती थी, गणिकाएं होती थी। गणिका और वैश्या में जमीन आसमान का अंतर है। वैश्या वो है जो पैसे के लिए शरीर को बेचती है, गणिका वो है जो अपनी कला की साधना करती है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो हमारे यहां गणिकाएं होती थी जो संगीत को माध्यम बनाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास किया करती थी। हम सब भी योग और प्राणायाम कर रहे हैं ना आखिरकार ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो गणिकाएं भी होती थी, वो संगीत को माध्यम बना के ईश्वर प्राप्ति का काम किया करती थी। तो गणिकाएं हैं, वैश्याएं हैं और ये हिजड़े हैं। ये तीन वर्ग गांव में हुआ करते थे जिनको आज हम बहुत उपेक्षित और पिछड़ा मानते हैं। लेकिन मैंने 150 साल पहले के गांव का जब अभ्यास किया तो पता चला कि जब किसी की शादी होती थी तो शादी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। हमारे देश में शादी में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर मैं ढूंढता 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 पहुंचा तो वो मंगलसूत्र होता है, जो पति अपनी पत्नी के गले में पहनाता है और उसके बाद माना जाता है कि ये पत्नी उसकी है, वो पति उसका। ये जो मंगलसूत्र बनाने का काम तो सुनार किया करते थे, और मंगलसूत्र बनने के बाद वो हिजड़ों के घर में भेजा जाता था, गणिकाओं के घर में भेजा जाता था, वहां की मिट्टी उनके ऊपर लगाई जाती थी और वापस आकर वो किसी वधू के गले में डाला जाता था। इतना सम्मान उनका होता रहा इस देश में, हिजड़ों का भी सम्मान था, गणिकाओं का भी सम्मान था। माने विवाह के समय में सबसे महत्वपूर्ण मंगलसूत्र जो गले में डाला जा रहा है वो किसी गणिका के घर से होकर अगर नहीं आया तो समझ लो वो पवित्र नहीं है। तो बहुत खोजता रहा मैं कि इसके पीछे का दर्शन क्या है, तो कहा जाता है कि इनका जो आशीर्वाद होता है वो जीवन पर्यंत रहता है। वो कुछ कहानी है श्री राम जी के समय की, और श्री राम ने इनको आशीर्वाद दिया कि आप जिसको आशीर्वाद दोगे वो जिंदगी भर साथ रहेगा। अब वो कहानी में हम ना जाएं, लेकिन सम्मान की बात अगर हम करें तो इतना सम्मान इनका होता था विवाह के समय में। इसी तरह से जब मृत्यु होती थी किसी व्यक्ति की गांव में तो सबसे पहला सम्मान किसका होता था, सबसे पहला सम्मान होता था बांस का काम करने वाले कारीगर का, जो अर्थी बना के लाता था घर में और अर्थी रखता था और दूसरे तरफ उसका सम्मान होता था। फिर दूसरा सम्मान होता था जो कपड़ा बना के लाता था, क्योंकि आपको मालूम है मृत शरीर पर नया कपड़ा डाला जाता है, पुराना कपड़ा उसके लिए उपयोग नहीं होता। तो नया नया कपड़ा बनाकर कोई बुनकर लेके आता था, उस कपड़े का सूत बनाने वाला धुनकर आता था, फिर उस कपड़े का और कुछ प्रोसेसिंग करने वाले कारीगर आते थे और मृत व्यक्ति के शरीर को सम्मान पूर्वक वो कपड़ा उड़ाया जाता था, सम्मान के साथ उसकी अर्थी पर उसका शरीर रखा जाता था। वो अर्थी बनाने वाला बांस का कारीगर और कपड़े बनाने वाले तीन तरह के कारीगर। फिर उसके बाद जब अर्थी को लेके जाते हैं गांव में अंतिम संस्कार के लिए, तो गांव में सबसे ज्यादा जिसको और खराब श्रेणी में आज की तारीख में हम देखते हैं डोम, डोम वो लोग होते हैं जो मृत शरीर को जलाने का काम करते हैं। तो डोम लोग वो हांडी लेकर जिसमें आग रहती थी वो अर्थी के आगे आगे चलते थे और अंतिम संस्कार के लिए उसी को बुलाया जाता था और मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि देने का काम तो पुत्र करते थे या पुत्रियां जो भी करते थे, लेकिन वो डोम बराबर उनके साथ में खड़ा होकर ये काम करवाया करता था। तो ये बराबर खड़े होकर काम का करवाना ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और भारत के इतिहास का अध्ययन करते करते एक दिन मैं ऐसे कुछ दस्तावेज देखने लगा तो पता चला कि भारत में 565 जो रियासतें रही अंग्रेजों के आने के पहले, इनमें से कम 70 से ज्यादा रियासतों के राजा डोम थे। व्यक्तिगत जीवन में वो अर्थी को अंतिम कंधा देते थे, संस्कार करते थे, मृत्यु संस्कार जिसको हम कहें, अग्नि संस्कार कहें, और बाकी के जीवन में राजा थे, निर्णय करते थे, फैसले करते थे, न्याय देते थे। अंग्रेजों के आने के पहले तक ये व्यवस्था रही। हमारे भारत में 565 रियासतों में कई राजा तेली थे, कई राजा धुनकर थे, बुनकर थे। ये काम के आधार पर बनी हुई हमारे यहाँ जातियां हैं, ये जन्म से बनी हुई जातियां नहीं है, इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा। काम को महत्व देकर हमने ये जातियों का निर्माण किया इस देश में, अंग्रेजों ने इसमें ऊंच नीच डाली और इसको आगे पीछे कर दिया। तो ऐसी सुंदर गांव व्यवस्था जिसमें श्रम अमूल्य है, अनमोल है, जिसमें उत्पादन भरपूर है, 2,000 वस्तुएं एक एक गांव में पैदा होती रहीं, फिर उन वस्तुओं की प्रोसेसिंग का काम करके शहरों में भेजा जाना, दूध का उत्पादन, दही का, मक्खन का आदि आदि, हर तरह से सुख समृद्धि से भरपूर गांव थे इस देश में। और गांव जब इतने सुख समृद्धि वाले होंगे तो उन पर आधारित शहर भी और नगर भी सुख समृद्धि वाले ही थे। फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आज के गांव फिर इतने उल्टे दिखाई क्यों देते हैं हमको, आज के गांव में तो कारीगरों का सम्मान नहीं है, आज के गांव में तो जाति और भेदभाव इतना हो गया है कि कोई किसी को सामने देखना पसंद नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। गांव में पहले शादियां होती थी ना 150 साल पहले, तो शादी करने के लिए कोई ठेकेदार नहीं बुलाना पड़ता था भोजन बनाने को, गांव की सारी महिलाएं इकट्ठी होती थी, कोई पूड़ी बेलती थी, कोई आटा मलती थी, कोई सब्जी बनाती थी और पूरी बारात को खिलाते थे और गांव वाले सब मिलके उसी में खाते थे। तो शादी हो, विवाह हो, किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो, सारा गांव एक साथ खड़े होकर सब काम कर लेता था। अब हमारे गांव में ऐसा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल उल्टा चित्र गांव का है, गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, लाचारी है, बीमारी है। ये और गांव में एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा, एक दूसरे की मदद लेना बंद हो गया, एक दूसरे पर भरोसा करना बंद हो गया। ये इतना उल्टा चित्र 150-200 साल में कैसे हो गया? इसकी एक ही करुण कहानी है, एक ही करुण गाथा है कि ये उल्टा चित्र अंग्रेजों ने कर दिया, अपने आप नहीं हो गया। हमारे मन में कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमारे गांव में गिरावट आती चली गई, गिरावट आती चली गई, उसके कारण आज के गांव बिल्कुल उल्टे दिखाई देते हैं। ये गिरावट अंग्रेजों ने लाई है, ये अपने आप नहीं आई है। अंग्रेजों ने ये गिरावट लाई, हमारे गांव की पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और क्यों कर दिया? उसका एक कारण है जो सबसे बड़ा कारण है। वैसे तो बीसियों कारण है, सब नहीं बताऊंगा। एक कारण जो सबसे महत्व का है, जिसको अंग्रेज भी कहते हैं कि ये कारण से हमें भारत की ग्रामीण व्यवस्था को तोड़ना पड़ा, वो कारण क्या है? गांव चूंकि स्वावलंबी था, और स्वावलंबी समाज किसी का गुलाम नहीं होता, आप ये जान लीजिए। स्वावलंबी समाज को गुलाम नहीं बना सकते आप, जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है उसको परावलंबी नहीं बना सकते, जो अपने हाथ पैरों की मदद से खड़ा हुआ है उसको परावलंबी नहीं बना सकते, उसको गुलाम नहीं बना सकते, उसको कैद करके नहीं रख सकते। ये अंग्रेजों को समझ में आया। भारत की समाज व्यवस्था का जब उन्होंने अध्ययन किया, तब उनको ये समझ में आया कि भारत को तो गुलाम बनाना एकदम असंभव है, संभव ही नहीं है, इसको गुलाम बनाना पड़ेगा। तो गांव की जो स्वावलंबी व्यवस्था है इसको तोड़ना पड़ेगा। अब स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए, जिनके मैं नाम बताता हूं। सबसे पहला कानून अंग्रेजों ने बनाया भारत के ग्रामीण स्वावलंबन को तोड़ने के लिए, उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है, ये कानून 1860 में बनाया अंग्रेजों ने, और अभी 2010 में भी यही कानून चल रहा है। बस इस कानून में भारत सरकार ने आजादी के बाद इतना ही परिवर्तन किया है कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट में बदल दिया है, बाकी कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला। जो 1860 का अंग्रेजों का बनाया कानून था वैसा ही है। इस कानून के चलते अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के गांव पंचायत की जो ताकत थी वो सारी ताकत छीन कर एक अंग्रेज अधिकारी के हाथ में दे दी, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम रखा कलेक्टर, जिसको आज हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हरियाणा में उसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर। तो भारत के कुछ राज्यों में वो डिप्टी कमिश्नर है, कुछ राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कुछ राज्यों में अभी भी कलेक्टर है। ये अंग्रेजों की बनाई गई पोस्ट है जो 1860 में उन्होंने लाई। और इसमें किया क्या कि गांव का जो सरपंच है, गांव की जो न्याय पंचायत है, और गांव के संसाधनों को देखने वाली जो समितियां हैं, वो सब कलेक्टर के नीचे होंगी और कलेक्टर इनके ऊपर होगा। जो कलेक्टर कहेगा वो कानून है, जो कलेक्टर कहेगा वो निर्देश है, जो कलेक्टर कराएगा वो है, और बाकी जो होगा वो गैर कानूनी है। तो ये कलेक्टरी की व्यवस्था जब अंग्रेजों ने स्थापित कर दी गांव समाज के ऊपर, इसके बाद गांव टूटना शुरू हो गए, क्योंकि जो काम न्याय पंचायत गांव में करती थी, जिसको हम पंचायत कहते हैं, वो कलेक्टर के हाथ में चला गया। जो काम रखरखाव का गांव के पंचायत करती थी, वो कलेक्टर के हाथ में चला गया। तो सब काम गांव से छीन कर कलेक्टर के हाथ में दे दिए, और कलेक्टर इस देश में सब अंग्रेज हुए शुरू के दौर में, जिनको भारत का एबीसीडी भी पता नहीं था, तो वो कुछ का कुछ करते रहे और गांव उसमें टूटते सारे चले गए। इसी तरह अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक्ट। एक विभाग है उसका नाम जानते हैं पीडब्ल्यूडी, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये अंग्रेजों का बनाया गया विभाग है। इसमें इन्होंने क्या किया कि गांव में जो काम व्यक्ति रूप से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता अकेले, वो सभी काम करने के लिए सरकारी संस्था होगी, और उस संस्था का नाम पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। गांव में तालाब बनाना है तो पीडब्ल्यूडी बनाएगा, सड़क बनानी है तो पीडब्ल्यूडी बनाएगा, कुआं खोदना है तो पीडब्ल्यूडी बनाएगा, भवन बनाना है तो पीडब्ल्यूडी बनाएगा। माने जो काम पहले गांव के लोग मिलकर कर लेते थे, कुआं खोदना है तो गांव के लोग खोद लेते थे, तालाब बनाना है तो गांव के लोग बना लेते थे, भवन बनाना है तो गांव के लोग बना लेते थे, अब उस काम को करने के लिए अंग्रेजों ने एक डिपार्टमेंट बना दिया पीडब्ल्यूडी। और जिस दिन से यह डिपार्टमेंट भारत के अस्तित्व में आया, गांव का सारा ढांचा तहस नहस हो गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों को उतनी होशियारी और उतनी अकल तो है नहीं कि किस गांव की क्या जरूरत है, किस गांव में कुआं बनना है, कहां तालाब बनना है, कहां पर जोहड़ बननी है, कहां पर पोखर बननी है। ये तो सब गांव वाले जानते थे क्योंकि वो वहां रहते थे। पीडब्ल्यूडी वाला दूर कहीं रहता, उसको कुछ पता नहीं। उसने अंड बंड शंड कुछ करना शुरू किया और इस देश का सारा बंटाधार कर दिया गांव की पब्लिक वर्क्स की व्यवस्था को। इसी तरह से अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जिसके आधार पर न्याय होगा। गांव वाले जो अपनी बुद्धि और मन के आधार पर न्याय किया करते थे वो आईपीसी के आधार पर चला गया। सीआरपीसी बना दिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर सीपीसी बना दिया, सिविल प्रोसीजर कोड। तो सारी न्याय व्यवस्था जो गांव के पंचों के और सरपंचों के और न्यायिक सदस्यों के हाथ में होती थी और जो धर्म आधारित होती थी वो सब अंग्रेजी कानून आधारित हो गई। इसी तरह से अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और इस कानून के चलते हुआ क्या कि जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे वो एक झटके में इस कानून के बाद अंग्रेजी सरकार की संपत्ति हो गए। फिर अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन हड़पने का कानून, जो डलहौजी आके कर गया। तो इस कानून के चलते पहले क्या था कि गांव की जमीन गांव के नागरिकों की होती थी, इस कानून के बाद गांव की सारी जमीन अंग्रेजी सरकार की हो गई। गांव के लोग उस पर टेनेंट हो गए। टेनेंट माने किराएदार। पहले थे वो जमीन के मालिक, फिर हो गए वो किराएदार। एक कानून ने भारत के करोड़ों किसानों को जमीन के मालिक से किराएदार बना दिया। अब वो जमीन उनकी नहीं है, वो सारी जमीन सरकार की है। तो सरकार की जमीन होने का मतलब जब सरकार चाहे तो जमीन को ले ले और जब चाहे तो अपनी दया पर आपको खेती करने के लिए दे दे। तो जमीनें चली गई किसानों की। कारीगरी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, और उसमें क्या हुआ कि गांव के लोग जब सब एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का काम कराते थे ना, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि एनजीओ बनना शुरू हो गए गांव-गांव में, और गांव का सब काम एनजीओ करेंगे। गांव वाले हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, माने एनजीओ के परावलंबी कर दिया पूरे गांव को। और इसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के नाम पर लाखों एनजीओ हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से फल फूल रहे हैं। कोई गरीबी दूर करने में लगा है, कोई बेकारी दूर करने में लगा है, कोई भुखमरी दूर करने में लगा है। गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। गरीबी दूर हो रही है तो एनजीओ की हो रही है, बेकारी दूर हो रही है तो एनजीओ में काम करने वाले लोगों की हो रही है, और भुखमरी दूर हो रही है तो एनजीओ के लोगों की हो रही है। मैंने ऐसे ऐसे एनजीओस देखे हैं इस देश में जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 40,000 रुपए महीने का वेतन है और गांव में गरीबी दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। 40,000 का वेतन लेके गांव में गरीबी दूर करने के काम में लगे हुए। तो वो अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं, गांव की नहीं। अंग्रेजों ने इतनी चतुराई के साथ ये कानून बनाया सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कि पूरे गांव का स्वावलंबन तहस नहस हो गया इसमें। इन कानूनों के चलते भारत के गांव बर्बाद हुए। फिर अंग्रेजों ने गांव को लूटने के लिए कानून बनाए। एक कानून बना दिया लगान का, जितना उत्पादन करो 90% अंग्रेजों को लगान में दो। फिर कानून बना दिया सेंट्रल एक्साइज का कि कोई उत्पादन करो उस पर सेंट्रल एक्साइज भरो 350%। फिर बेचने पे कर लगा दिया, उत्पादन पे कर लगा दिया, आने लाने पे कर लगा दिया। तो तरह तरह के करके कानून बना के और दूसरे कानून बना के इस ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने जड़ तक खोद डाला और पूरी तरह से उखाड़कर फेंक दिया। अब उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गांव आज हमें गरीब दिखाई देते हैं, भुखमरी के शिकार दिखाई देते हैं, परावलंबी दिखाई देते हैं। गांव में इतनी दुर्दशा है जितनी हमें कल्पना नहीं है, क्योंकि हम में से कई लोगों ने तो कई गांव देखे नहीं है। मैं तो भारत में पिछले 15 साल से घूम रहा हूं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। ऐसे ऐसे गांव मैंने देखे हैं जहां के नागरिकों के पास पहनने को 2 कपड़े नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री सुभाष चंद्रा जी आए थे और यहां उन्होंने 15 मिनट का व्याख्यान दिया था। उसमें एक बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही थी कि वो जब पहली बार किसी गांव में गए और वहां उन्होंने देखा कि आदिवासी महिलाएं, वनवासी महिलाएं शरीर पर एक वस्त्र धारण किए हुए, और जब वो दूसरी महिलाओं को मिलने के लिए बुलाते थे तो एक महिला अंदर जाती थी, थोड़ी देर बाद दूसरी आती थी, तो उन्होंने ध्यान किया कि दोनों के कपड़े एक ही हुआ करते थे। एक महिला अपने कपड़े उतारती थी, दूसरी पहनती थी, तब उनके पास मिलने के लिए आती थी। तो सुभाष चंद्रा ने जब कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसे गांव मैंने देखे हैं मेरी आंखों से। इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, इतनी बदहाली। सुभाष चंद्रा जी उस दिन बता रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है गांव के लोगों को आम की गुठलियां बीनते हुए, ताकि वो भविष्य में सब्जी बनाकर उसको खा सके। इतनी गुर्बत में लोग कैसे पहुंच गए। 175 साल तक पहले का भारत इतना अच्छा, स्वस्थ, समृद्ध, संपत्ति वाला, गांव-गांव स्वावलंबी, और 175 साल में इतना गड़बड़, इतना गिर गया। तो उसके गिरावट के पीछे का जो कारण है, वो कारण है अंग्रेजों के बनाए गए कानून और उनकी बनाई गई नीतियां। उन कानून और नीतियों के चलते हम नीचे तक गिर गए, गरीब, भुखमरी, बदहाली के शिकार हो गए। अब आता हूं आज की बात पर कि अब हमको फिर हमारे देश के गांव स्वावलंबी बनाने हैं और नगरों को, शहरों को गांव के आधार पर खड़ा करना है। तो गांव स्वावलंबी हो जाएं तो हमारे शहर और नगर भी स्वावलंबी हो जाएंगे, और गांव और शहर स्वावलंबी हो गए तो भारत फिर से स्वावलंबी हो जाएगा। भारत स्वाभिमान का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमें हमारे देश की व्यवस्थाओं को फिर से स्वावलंबी बनाना है, किसी पर निर्भर नहीं होना। पर निर्भरता सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसमें से सारे दुर्गुण निकलते हैं। दुनिया के सारे समाजशास्त्री एक बात कहते हैं कि जिन देशों का स्वावलंबन चला जाता है उनकी आजादी कभी भी चली जाती है, और जिनकी आजादी चली जाती है उनका सब कुछ चला जाता है। उनकी समृद्धि चली जाती है, उनकी संपत्ति चली जाती है, उनका ज्ञान चला जाता है, उनका चरित्र चला जाता है, उनके जिंदगी से हर चीज खत्म हो जाती है जिनकी आजादी चली जाती है। और आजादी जाने का एक सबसे बड़ा कारण है परावलंबन, स्वावलंबन का खत्म होना। तो हम नहीं चाहते कि भविष्य में भारत की आजादी फिर चली जाए। हम नहीं चाहते कि हम अभी भी परावलंबी होकर जिए। हमने 200-250 साल अंग्रेजों का परावलंबन झेला है, अब इसको ज्यादा दिन झेलने की हमें जरूरत नहीं है और गरज नहीं है। अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, अब अपने समाज को स्वावलंबी भी बनाना, पैरों पे खड़ा करना, तो ये शुरुआत गांव से ही होगी। क्योंकि अभी भी हमारे देश में आजादी के बाद 6,38,365 गांव हैं, तो गांव को ही पहले स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। शहरों की संख्या तो 680 है और गांव 6,38,365 है, तो 6,38,365 की तुलना में 680 तो बहुत छोटी संख्या है, अगर आप निकालेंगे तो 1% से भी नीचे निकलती है। तो शहर तो स्वावलंबी हो ही जाएंगे क्योंकि बहुत थोड़े हैं, गांव को स्वावलंबी हम बना लें, ये हमें काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे जी गांव स्वावलंबी हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा कि गांव जिन कानूनों के चलते परावलंबी हुए हैं उन कानूनों को जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा, और ज्यादा कठोर शब्दों में कहूं तो इन सब कानूनों को आग लगा देनी पड़ेगी जिन कानूनों ने हमारे गांव को परावलंबी बनाया। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि गांव के परावलंबन को खत्म करने के लिए, स्वावलंबन बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सा कानून खत्म होना चाहिए, तो मैं कहूंगा लैंड एक्विजिशन एक्ट सबसे पहले खत्म होना चाहिए। दूसरा कानून जो खत्म होना चाहिए वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तीसरा कानून खत्म होना चाहिए गांव के स्वावलंबन के लिए इंडियन पुलिस एक्ट, जो अंग्रेजों के समय के, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि अंग्रेजों के समय के ऐसे 34,735 कानून हैं जिन्होंने हमारे गांव को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, छोड़ते नहीं है वो गांव को स्वावलंबी होने के लिए। तो ये सब कानून हमें खत्म करने पड़ेंगे, और इन कानूनों को खत्म कराने के लिए भारत की सरकार पर, भारत की संसद पर और भारत की विधानसभाओं पर दबाव डालना पड़ेगा, और इतना दबाव डालना पड़ेगा कि सरकारों को दो में से एक चीज चुनने को हो जाए, या तो वो ये सारे कानून को खत्म करें 34,735, या उनकी सरकार एक मिनट में धराशायी हो जाए। ये दो में से स्थिति बन जाएगी तो सब कानून बदल जाएंगे। हमारे देश में दुर्भाग्य से जो तंत्र चल रहा है ना, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक ही नियम है कि इस पर बहुत ज्यादा दबाव अगर आप डाल सकते हो तो ये कोई भी काम करने को सरेंडर हो जाती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर इसके ऊपर दबाव नहीं है तो ये छुट्टा सांड की तरह से होती है जो किसी को भी रौंद देती है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में दुनिया के सारे विद्वानों का एक मत है कि इसके ऊपर अगर जनता का दबाव है, जनता के कंट्रोल में है अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो ये स्वर्ग का निर्माण करती है। लेकिन भ्रष्ट नेता और अधिकारियों के कंट्रोल में जब ये चली जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो यही नरक का निर्माण भी कर देती है। तो आज अपने देश में गाहे बगाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है। अब इसके ऊपर जनता का दबाव इतना बनाना है कि ये स्वर्ग का निर्माण करने वाली संस्था हो जाए। अभी तक ये नरक का निर्माण करने वाली संस्था बनी हुई है, क्योंकि इसके ऊपर इस समय जनता का दबाव नहीं है, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में ये चल रही है। तो हमें भारत स्वाभिमान की तरफ से अगले 3-4 वर्षों में इतना जन दबाव खड़ा करना है कि ये संसदीय लोकतंत्र जनता के दबाव में आ जाए और स्वर्ग का निर्माण करना शुरू करे। और जनता के दबाव में जब ये आ जाएगा तो इसको हम आदेश करें और हमारे आदेश पर ये संसद और विधानसभा नीति बनाए, कानून बनाए। वो आदर्श का सपना हम देख रहे हैं। आदेश हम करेंगे, निर्देश हम करेंगे, कानून संसद बनाएगी और विधानसभा बनाएगी। हम संसद में नहीं जाएंगे, हम विधानसभा में भी नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा किया हुआ आदेश संसद और विधानसभा के लिए नजीर बनेगा, कानून और नीति के आधार पर। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। भारत स्वाभिमान के किसी कार्यकर्ता को संसद में जाने की जरूरत ना पड़े, किसी कार्यकर्ता को विधानसभा में जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन संसद और विधानसभाओं की हैसियत इतनी हो जाए कि वो भारत स्वाभिमान के कहे हुए वाक्यों को, बोली गई नीतियों को, बनाई गई व्यवस्थाओं को देश के लिए कानून बनाने के लिए सहमत हो जाए। इतनी ताकत और इतना दबाव तो खड़ा कर ही देना है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? ये बहुत आसान है, असंभव इसमें कुछ भी नहीं है। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता, हर चीज संभव होती है। महत्व इस बात का होता है कि करने वालों का संकल्प कितना मजबूत है और कितना ताकतवर है। हर चीज संभव होती है। आज से थोड़े साल पहले तक दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि सोवियत संघ नाम का देश धराशायी हो जाएगा, लेकिन हो गया। आज से कुछ साल पहले तक कोई सोच नहीं सकता था कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, वो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। हो गया। कोई कल्पना नहीं करता था कि अमेरिका की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, जो वित्तीय अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, वो ऐसी ध्वस्त होगी कि अमेरिका के नामी गिरामी 156 बैंक दिवालिया हो जाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, एएनजेड, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बड़े बड़े अमेरिका के बैंक, जिनके बारे में सारी दुनिया हैरान है ये सोच सोच कर कि ये दिवालिया कैसे हो गए। इनके दिवालियापन के बारे में किसी को कल्पना नहीं थी, लेकिन वो हो गया। ऐसे ही कोई नहीं सोचता था दुनिया में कि 15% वोट काले लोगों के अमेरिका में है और 85% वोट गोरे लोगों के अमेरिका में है। तो जहां 15% ही काले वोट हो अमेरिका में, वहां एक काला आदमी राष्ट्रपति हो जाएगा 250 साल के इतिहास में किसी ने कल्पना नहीं की थी पूरी दुनिया में, लेकिन हो गया। अभी और कुछ चीजें हो रही हैं। यूरोप के 24 देशों ने मिलकर एक करेंसी बना ली। आपको मालूम है यूरो डॉलर? पहले यूरोप के हर देश की अलग अलग करेंसी थी, अब 24 देश इकट्ठे होकर एक ही करेंसी में काम कर रहे हैं, वो यूरो डॉलर है। ब्रिटेन को छोड़कर सारे देश उसमें शामिल हो गए। किसी की कल्पना नहीं थी कि कभी ऐसा समय आएगा दुनिया में कि यूरोप की एक करेंसी हो जाएगी, वो हो गई। अब एक करेंसी नहीं, यूरोप की एक पार्लियामेंट हो गई है पूरी। 24 देशों ने मिलकर एक कॉमन पार्लियामेंट बना लिया है और उसका प्रेसिडेंट उन्होंने घोषित कर दिया है। ये 24 देश पिछले 500 साल एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता। फ्रांसीसी लोग अंग्रेजों को पसंद नहीं करते, अंग्रेज फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते, जर्मन लोगों से फ्रांसीसियों को घृणा है, फ्रांसीसियों से जर्मन लोगों को घृणा है। एक दूसरे से घृणा और नफरत करने वाले 24 देश इकट्ठे हो जाए और एक पार्लियामेंट बना ले, ये किसी को कल्पना नहीं थी, लेकिन हो गया। इसी तरह से अब वो कॉमन आर्मी बनाने जा रहे हैं, कॉमन मार्केट उन्होंने बना लिया है, तो कॉमन मार्केट बन गया 24 देशों का, कॉमन आर्मी बनने जा रही है, कॉमन पार्लियामेंट हो गई, कॉमन करेंसी हो गई, जो एकदम असंभव दिखने वाली चीजें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत स्वाभिमान के लिए कोई भी चीज असंभव है। हम भी वो सब कर डालेंगे जो कुछ यूरोप और अमेरिका वाले कर रहे हैं। अगर यूरोप और अमेरिका वाले एक दूसरे से घृणा और नफरत करते हुए एक होकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो हम भारतवासी भी एक होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक होकर इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं, कानूनों को बदल सकते हैं, और अंग्रेजों के डाले हुए विष को खत्म करके इस देश को अमृत तुल्य बना सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, हम उनसे कम नहीं है। उनकी दो आंखें हमारी दो आंखें, उनके दो कान हमारे दो कान, उनके दो हाथ हमारे दो हाथ, उनके दो पांव हमारे दो पांव, हमारे पास तो उनसे बहुत ज्यादा है। उनको तो भगवान ने सूरज नहीं दिया, धूप नहीं दी, प्रकाश नहीं दिया, जमीन के नीचे संसाधन नहीं दिए। जितनी संपत्ति हमारी जमीन के नीचे किसी देश के पास नहीं, शायद अफ्रीका को छोड़कर। अफ्रीका के पास हमसे थोड़ी ज्यादा संपत्ति है, अफ्रीका को एक बाजू में रख दे तो हमारे बराबर संपत्ति तो यूरोप के किसी देश के पास नहीं है। जमीन के नीचे 90 खनिज जहां मिलते हो, एक साल में 365 दिन जहां सूरज निकलता हो, इस देश के किसान इतने मेहनती हो, एक एक एकड़ खेत में 30 क्विंटल धान पैदा होता हो, एक एक एकड़ जमीन में 125 मीट्रिक टन गन्ना पैदा होता हो, एक एक एकड़ खेत में 12 क्विंटल जहां कपास होती हो, एक एक एकड़ में जहां 25 क्विंटल तक गेहूं होता हो, इस देश को क्या कमी है। इतना भगवान ने हमको दिया है, बस उसका सही सदुपयोग करने की, नीति बनाने की जरूरत है और व्यवस्था में उसको लाने की जरूरत है। इतना कुछ हमको दिया, नमक भी हमको पाकिस्तान से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि 2,00,000 गांव हमारे देश में समुद्र के किनारे हैं और भरपूर नमक बना रहे हैं और नमक बनाकर हम सबको खिला रहे हैं और बन रहा है, करोड़ों मीट्रिक टन नमक बन रहा है। तो हमारे देश को फिर से स्वावलंबी बना के अपने पैरों पे खड़ा कर देना है। जैसे दुनिया के देश खड़े हो रहे हैं वैसे ही हम खड़े होंगे। तो अब आप बोलेंगे ये शुरुआत हम कहां से करें, शुरुआत हमारी होगी अंग्रेजों के बनाए गए कानून से। ये कानून हटते ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब पहला कानून अगर हम ये लैंड एक्विजिशन एक्ट का बदल दें तो जमीन का बंटवारा भारत के किसानों में हो सकता है। अभी हमारे पास करीब करीब 34 करोड़ हेक्टेयर जमीन है पूरे देश में, इसमें से करीब 18 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर हम खेती करते हैं, बाकी जमीन हमारी या तो जंगल के नीचे है या तो ऊसर भूमि है जिस पर खेती नहीं हो सकती। तो ऊसर भूमि है और जंगल के नीचे है, जंगल के नीचे वाली जमीन को भारत सरकार ने ले रखा है किस कानून के आधार पर, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और एक दूसरा कानून है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये दो कानून के आधार पर जंगल की सारी जमीन सरकार की है। इन दो कानूनों को बदलना है बस, और बदल के क्या करना है कि जंगल के नजदीक में जो जो गांव हैं उन सब गांवों की सामूहिक हिस्सेदारी उस जमीन की है जो सरकार ने फॉरेस्ट कवर के रूप में ले रखी है। कानून बदलते ही चमत्कार होगा इस देश में। आप बोलेंगे क्या, जैसे आप ये कानून बनाएंगे कि गांव जो जंगलों के नजदीक हैं उनकी सामूहिक हिस्सेदारी उस जमीन पर है, तो जमीन का हिस्सा जब गांव वालों का हो जाएगा तो उस जमीन पर वो सब कर डालेंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की, इतना वो कर डालेंगे। क्योंकि हमारे देश में जंगलों के नजदीक जो रहने वाले लोग हैं ना वो सब वनवासी हैं, दुर्भाग्य से हम सब उनको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी तो हम सभी हैं, वो वनवासी हैं, हम वन में नहीं रहते वो जंगल में रहते। तो ये जो वनवासी लोग हैं इनके कंट्रोल में, इनके अधिकार में जैसे ही जमीन आएगी तो उनको इतना ज्ञान है जड़ी बूटियों को लगाने का, उनको इतना ज्ञान है फल फूल पैदा कराने का, उनको इतना ज्ञान है अनाज के उत्पादन को बढ़ाने का, और उनके तरीके से वो सब ज्ञान का भरपूर उपयोग करेंगे और इस पूरी ऊसर जमीन को एक हरा भरा, एक बहुत सुंदर व्यवस्थित या तो खेत बना देंगे या जंगली बना देंगे, ऊसर नहीं रहेगी। आप बोलेंगे जी ऊसर जमीन को कैसे किया जा सकता है, बहुत आसान काम है, ऊसर जमीन को ठीक करने के कोई मुश्किल रास्ते नहीं है, बहुत आसानी से भारत की 17 करोड़ हेक्टेयर ऊसर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। बस इतना ही करना है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बैल का गोबर, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, बैल का मूत्र, माने जानवरों का जो गोबर है मल और जानवरों का जो मूत्र है, इसको एक निश्चित अनुपात में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर ऊसर जमीन पर 3 साल तक डालते रहना है। चौथे साल में वो जमीन सोना पैदा करने लगेगी, क्योंकि ये करके देख लिया गया है इस देश में। हमारे देश के हजारों किसानों ने यह परीक्षण किया है कि जिस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता, उस जमीन पर गाय का गोबर, गाय का मूत्र लगातार मिलाकर 3 वर्ष तक छिड़कते रहने पर उसी जमीन में सबसे ज्यादा उत्पादन हो जाता है। आप बोलेंगे जहां पत्थर है वहां भी उत्पादन हो जाता है, पत्थर वाली जमीन में इतना भरपूर आम आता है और इतना भरपूर आंवला पैदा होता है कि आप हैरान हो जाएंगे। जो जमीन में पत्थर ज्यादा है ना, वहां आयरन बहुत है, लोहा बहुत है, और जिस जमीन में लोहा बहुत होता है ना, वहां आम और आंवले जैसे सैकड़ों फल भरपूर पैदा होते हैं। तो हम हमारे देश की जो बची हुई 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाकर गांव के लोगों को स्वावलंबन दे सकते हैं और वनवासी लोगों को धन धान्य से समृद्ध कर सकते हैं। वहां जड़ी बूटियां उगाई जा सकती हैं, फलों का उत्पादन किया जा सकता है और उसमें बहुत सारा अनाज भी पैदा हो सकता है। उस जमीन को सुधारने का काम अगर हम कर पाए तो आप बोलेंगे ये काम कौन करेगा, पहले कानून बदलना है फिर ये काम करेंगे हम सब मिलके। भारत स्वाभिमान का अभी हमारी कल्पना है हर गांव में एक योग शिक्षक होगा अगले 2-3 वर्षों में, तो 6,38,365 गांव में एक एक योग शिक्षक हो जाएगा। उस योग शिक्षक को ऊसर जमीन सुधारने की ट्रेनिंग यहां हम देंगे और वो ट्रेनिंग लेके गांव में जाएगा और गांव के लोगों को इकट्ठा करके छोटी छोटी बातें बताएगा और वो जमीन को हम पूरी तरह से उपजाऊ बना लेंगे। ये मुश्किल से 3 साल का काम है। परिणाम जानते हैं क्या होगा, अभी हमारे देश में 21 करोड़ टन अनाज पैदा होता है जितनी भूमि पर हम खेती करते हैं, फिर दुगनी भूमि हमारे पास हो जाएगी तो 42 करोड़ टन अनाज तो हम ऐसे ही पैदा कर लेंगे। और 42 करोड़ टन अनाज पैदा हो गया तो दुनिया के 50 देशों के एक एक भूखे आदमी का पेट हम आराम से उस अनाज से भर देंगे, कोई 50 देशों में भूखा नहीं सोएगा, इतना अनाज हमारे पास होगा। और उस अनाज को बेचकर विदेशी मुद्रा कमाएंगे और उस विदेशी मुद्रा से देश के संसाधनों को बढ़ाएंगे। हम खाएंगे, पहले अपना पेट भरेंगे। वो खीर का उदाहरण याद रखना, खीर पहले घर के लिए खाने को होती है, बचे तो पड़ोसियों को खिलाई जाती है। अभी 21 करोड़ टन अनाज देश के लिए होता है, फिर 42 करोड़ टन हो जाएगा, हम दूसरों को भी देंगे, अपना पेट भर के दूसरों का पेट भरेंगे। और भारत तो भूमि ही है पेट भरने वालों की, पेट भरवाने वालों की, ये तो भूमि है, भगवान ने दिया ऐसा। तो फलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अनाज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। भारत देश में अंग्रेजों के जमाने का एक कानून चला आ रहा है और वो कानून जानवरों को कत्ल करने का कानून है। जानवरों को कत्ल किया जाता आपको मालूम है कानून के हिसाब से, और हर साल इस देश में 10 करोड़ जानवर काट दिए जाते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरे, बकरी 10 करोड़, और मुर्गे मुर्गी कितने काटे जाते हैं उसका तो सरकार को भी मालूम नहीं। तो 10 करोड़ जानवरों को हर साल हम काट देते हैं। काटने का कारण क्या है, उनको काटकर मांस पैदा होता है, गाय का मांस, बैल का मांस, भैंस का मांस, बकरे बकरी का मांस, वो मांस दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है, निर्यात करके हम कुछ विदेशी मुद्रा लेके आते हैं और उस विदेशी मुद्रा से डीजल और पेट्रोल खरीदकर अपनी गाड़ियां चलाते हैं। तो सरकार बार बार एक कुतर्क देती है कि जानवरों को काटना बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें मांस निर्यात करके जो विदेशी मुद्रा मिल रही है वो विदेशी मुद्रा हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उससे हमको डीजल पेट्रोल खरीदना है और ये डीजल पेट्रोल हर साल इसका उपभोग बढ़ता ही जा रहा है, कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए जानवर कटना बहुत जरूरी है। इस कुतर्क के आधार पर 63 वर्षों से लगभग 10 करोड़ जानवर हर साल कट रहे हैं। अब आप सोचो, हर साल जिस देश के 10 करोड़ जानवर कटें तो उस देश का तो सारा धन खत्म हो रहा है। आप जानते हैं जानवरों की कीमत क्या है? जानवर हमारे ऐसे अद्भुत जीव हैं जिनको भगवान ने पता नहीं ऐसा विशेष बनाया है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना, ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाना है, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज है वो गोबर है, गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, जानवरों का हो, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो मूत्र है। तो गोबर और मूत्र देने वाले तो जानवर हैं, और इन जानवरों की मदद से हम हमारे देश की 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन को अगर उपजाऊ बना सकते हैं तो इन जानवरों की कीमत तो बहुत बड़ी है। हम इनको काटें क्यों? इनको जिंदा रखें, क्योंकि जानवर कट गया तो खत्म खेल उसका, लेकिन वो जिंदा है तो कम से कम 20 साल तक गोबर देगा, मूत्र देगा, क्योंकि सामान्य रूप से गाय और भैंस की जो उम्र है हमारे देश में वो 20 वर्ष तक है। 20 वर्ष वो जिंदा रहेगा तो गोबर देगा, मूत्र देगा, उसके गोबर और मूत्र का उपयोग करके हम जो खाद बनाएंगे वो 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ करेगा, क्योंकि 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ करने के लिए दुनिया के किसी देश के पास कोई केमिकल नहीं है। हमारी सरकार झक मार के परेशान हो चुकी है। 63 साल में भारत सरकार ने दुनिया भर के इतने देशों को ये कहा कि भारत की ऊसर और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कोई हमको केमिकल दे दो। दुनिया के देशों ने कई तरह के केमिकल हमें दिए। एक जिप्सम नाम का केमिकल आता है, बाहर के देशों से हम आयात करके जमीन पर छिड़कते हैं, थोड़ा उत्पादन उससे बढ़ जाता है, थोड़े दिन में फिर वहीं पहुंच जाता है। तो दुनिया के पास कोई केमिकल नहीं है, और भगवान ने ये सारी ताकत जानवरों के गोबर में दे रखी है, मूत्र में दे रखी है, तो क्यों ना जानवरों का गोबर और मूत्र उपयोग किया जाए उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, तो उनका कत्ल क्यों किया जाए? तो ये कानून हमें तुरंत बंद कराना है, जानवरों के कत्ल करने का कानून। इस कानून के खत्म होते ही 10 करोड़ जानवर हर साल जिंदा रहने लगेंगे, उनका जो गोबर और मूत्र है वो हमारे खेतों को उपजाऊ बनाने के काम में आएगा। आपको मालूम है हमारी जो आज की जमीन पे खेती होती है, जिसको हम करीब 17-18 करोड़ हेक्टेयर मानते हैं, उस जमीन की खेती के लिए 5 लाख करोड़ रुपया किसानों को खर्च करना पड़ता है, यूरिया के, डीएपी के, सुपर फॉस्फेट के उपभोग के लिए। यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट और उस पर आने वाले कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक, एंडोसल्फान, मेलाथियन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, ऐसे 786 किस्म के कीटनाशक और 3 किस्म की रासायनिक जहरीली खाद, ये कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किसान करते हैं, तब 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर कुछ खेती होती है। और ये इसलिए हो रही है खर्चा क्योंकि गोबर और गोमूत्र उपलब्ध नहीं है किसानों के पास, क्योंकि जानवर कट रहे हैं जो गोबर और गोमूत्र दे रहे हैं। तो इन जानवरों का कत्ल अगर हमने रोक लिया तो ये 5 लाख करोड़ का जो यूरिया, डीएपी और हमें एंडोसल्फान छिड़कना पड़ रहा है, इसकी बचत हो जाएगी और बची हुई 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन के लिए और खाद हो जाएगा। इतना बड़ा स्वावलंबन पूरे देश में आ जाएगा जानवरों को कत्ल करने से बचाएं और इस कानून को बदलवाएं। और जब उत्पादन होगा ना, उस उत्पादन का मूल्य भी 5 से 10 लाख करोड़ तक तो हो ही जाएगा। तो अभी हम जो अन्न का उत्पादन कर रहे हैं वो 2 गुना हो सकता है, उसका मूल्य 2 गुना हो सकता है, उसका निर्यात हम दुनिया भर में करके भूखों का पेट भर सकते हैं, क्योंकि हमारी जरूरत का पूरा होने के बाद हम किसी को भी दे सकते हैं। कई तरह से देश की समृद्धि बढ़ने का काम हो सकता है। 2 कानून के खत्म होते ही लैंड एक्विजिशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और जानवरों को कत्ल करने का कानून, ये 3 कानून बदलते ही काम शुरू हो जाए। तो कानून बदलने के लिए तो परम पूजनीय स्वामी जी और जो केंद्रीय टीम है वो सरकार को लगातार दबाव डालती रहेगी अगले 4-5 वर्षों तक। आपको क्या करना है? आप उस दबाव को बढ़ाने के लिए सदस्यों की भर्ती करते जाइए। ये काम आपको करना है। सरकार से बात करनी है, मंत्री को कन्विंस करना है, संसद को कन्विंस करना है, विधानसभाओं को कन्विंस करना है, मुख्यमंत्रियों को बताना है, ये सब काम हमारे जिम्मे है, हम कर लेंगे इसको। लेकिन ये सब काम करने के लिए जो ताकत चाहिए वो आपकी है, करोड़ों करोड़ों भारत स्वाभिमान के सदस्यों की है, क्योंकि जैसे ही किसी प्रधानमंत्री के सामने हम ये कहेंगे कि देखिए जी ये 3-4 कानून हमें बदलवाने हैं, और हम ये नहीं कह रहे हैं, 5 करोड़ भारत स्वाभिमानी ये कह रहे हैं, 10 करोड़ भारत स्वाभिमानी ये कह रहे हैं, 20 करोड़ कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को तो कुर्सी सहित भवन हिल जाएगा, चिंता मत करिए। और उनको बहुत विनम्रता पूर्वक हम कहेंगे कि आपको भूतपूर्व होना है कि अभूतपूर्व? अभूतपूर्व होना चाहते हैं तो ये कानूनों को बदल दीजिए जो अंग्रेज हमारे सिर पर बिठा के चले गए, आपका नाम आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएगा। और जो भूतपूर्व होना चाहते हैं तो अभी हमको मना कर दीजिए, फिर हम 20 करोड़ लोग दिखा देते हैं अपनी ताकत कि आपको कितनी जल्दी हम भूतपूर्व बना दें। और एक प्रधानमंत्री को आपने भूतपूर्व कर दिया तो आने वाला हर प्रधानमंत्री डरेगा आपसे कि इनकी तो ताकत भूतपूर्व करने की है, इनसे डर के रहो, बच के रहो, जैसा कह रहे हैं वैसा करते रहो। तो कानून बदल जाएगा, नीतियां बदल जाएंगी, व्यवस्था बदल जाएगी। तो आपको ताकत बढ़ानी है, और ये ताकत कैसे बढ़ेगी? ये ताकत बढ़ाने का एक काम आप करिए, हर दिन 2, 5, 10, 20 लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ते जाइए। आप जुड़ गए, अब आपके पड़ोसी जुड़े, फिर मोहल्ले के लोग जुड़े, फिर गांव के लोग जुड़े, फिर शहर के जुड़े, जिले के, तहसील के, सब लोग जुड़ते ही जाएं, जुड़ते ही जाएं, जुड़ते ही जाएं, हमारी ताकत बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए। ज्यादा नहीं कहता, मैंने तो हिसाब भी जोड़ रखा है, जिस दिन 5 करोड़ भारत स्वाभिमानी इकट्ठे हो गए प्रत्यक्ष रूप से, उस दिन 50 करोड़ भारत आपके साथ जुड़ गया अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों से जुड़ा हुआ होता है अपने समाज में, 50 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष, 5 करोड़ प्रत्यक्ष, इतने ही पर्याप्त हैं 34,735 अंग्रेजों के काले कानूनों को बदलने के लिए। तो अब आप हिसाब लगा के जाइए कि हम में से एक एक को क्या क्या करना है और कितनी ताकत से काम करना है। तो ये कानून बदलते ही गांव के स्वावलंबन का काम हम शुरू करेंगे। फिर और एक कानून हमें बदलना है इस देश में, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, कि हमारी कृषि व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें पैदा होती हैं जिनका हम गांव में ही मूल्यवर्धन करें, अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, गांव में ही मूल्यवर्धन करें और उनको बाजार में बेचें। अभी क्या हो रहा है, अंग्रेजों की समय की नीति चली आ रही है इस देश में कि गांव में जो प्राथमिक वस्तुएं पैदा होती हैं जिसको हम कच्चा माल कहते हैं वो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरों को बेचते हैं। कच्चा माल बेचना अपने आप को फांसी लगाने के जैसा है। हम कच्चा माल बेचते हैं, क्या बेचते हैं, कपास बेच देते हैं दूसरे देशों को, हम लोहे का अयस्क बेच देते हैं दूसरे देशों को, हम बॉक्साइट बेच देते हैं, बॉक्साइट माने एल्यूमिनियम बनाने वाला अयस्क, वो हम बेच देते हैं, हम कॉपर का ओर बेच देते हैं दूसरे देशों को। तो 90 किस्म के बेशकीमती खनिजों को सीधा खोद कर दूसरों को बेच देते हैं हर साल, ये बेचना हमें बंद करना है। एक नीति बनानी है पूरे देश में और उसके आधार पर कानून गढ़ना है। नीति क्या बनानी है कि भारत से कोई भी कच्चा माल बिकने को विदेश में नहीं जाएगा, जो भी हम बेचेंगे पक्का माल बना के बेचेंगे। हम कपास नहीं बेचेंगे, कपास से कपड़ा बनाएंगे खादी का और उसे बेचेंगे। हम आलू नहीं बेचेंगे, आलू से चिप्स बनाएंगे और 500 रुपए किलो बेचेंगे उसे। आलू तो बिकता है 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, और वही आलू का चिप्स बनाकर आपको मालूम है अमेरिका की कंपनियां भारत में बेच देती हैं 500 रुपए किलो। देखा है वो पैकेट आता है अंकल चिप्स, रफल्स चिप्स, हॉस्टेस का, टॉप रेमन का, वो आलू के चिप्स का पैकेट खोलो तो आधे से ज्यादा तो हवा निकलती है उसमें। और आलू के चिप्स अगर गिनोगे ना तो 15 से ज्यादा नहीं निकलते, और वो पैकेट 15 रुपए का आता है। ऐसी लूट मची हुई है, आलू बेचो 5 रुपए किलो, आलू का चिप्स 500 रुपए किलो, 700 रुपए किलो, तो क्यों बेचे हैं हम आलू? भारत में 1,90,000 गांवों में आलू होता है और भरपूर होता है, और यह भारत की जलवायु और भूमि ऐसी है जो आलू के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जब 1,90,000 गांव में आलू हो रहा है तो उस गांव से आलू हम खाएंगे, सब्जी के रूप में, जितना आलू बचेगा उसका चिप्स गांव में ही बनवाएंगे, क्योंकि गांव में हर माँ, हर बहन, हर बेटी और हर भाई आलू का चिप्स बनाना जानता है, क्योंकि इसको बनाने में कोई मशीन नहीं लगती, ये तो हाथ का काम है। हमने देखा है होली के समय इस देश की सभी माताएं आलू का चिप्स बना लेती हैं, कोई गांव में दिवाली के समय बना लेती है, साल भर का बना के इकट्ठा करके रख लेती है। उन माताओं के हाथ में ऐसा जादू और हुनर है कि जो आलू सबसे जल्दी सड़ता है उसको चिप्स बना के वो एक एक साल तक घर में रख लेती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ता। इतना हुनर अगर हमारी माताओं के हाथ में है, बहनों के हाथ में है, क्यों ना देश के लिए उसका सदुपयोग किया जाए। तो गांव गांव आलू का चिप्स बनाने का गृह उद्योग चलाया जाए, आलू हर गांव में है, चिप्स वहीं बने, पैकेट में वहीं भरा जाए और अमेरिका में बिके, यूरोप में बिके, खाओ भारत का आलू का चिप्स। अभी तक वो हमें खिला रहे हैं, फिर हम खिलाएंगे उनको। आप बोलेंगे जी हम नहीं खाएंगे क्या आलू का चिप्स, परम पूजनीय स्वामी जी मना करते हैं मत खाओ इसको, तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अपना फैट क्यों बढ़ाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ाएं, जिनका बढ़ना है उनका बढ़े, अमेरिका वालों का बढ़ना है तो बढ़े, यूरोप वालों का बढ़ना, क्योंकि उनके पास आलू के अलावा है ही नहीं कुछ और खाने को। आपको मालूम है अमेरिका में जो सबसे बड़ा और यूरोप में जो सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ है ना, वो आलू ही है, और दूसरी चीज है प्याज, तो आलू में प्याज मिला के खाते हैं, प्याज में आलू मिला के खाते हैं, और कुछ है ही नहीं, इतने गरीब हैं बेचारे, दो के अलावा कुछ है ही नहीं खाने को। तो जिनको खाना है आलू का चिप्स वो खाएंगे, हमको नहीं खाना है तो सब निर्यात ही कर देंगे, अपने पास तो आलू के अलावा बहुत कुछ है खाने के लिए, और हम आलू इसलिए नहीं खाएंगे कि क्योंकि योगी हो गए हैं, प्राणायामी हो गए हैं, योग और प्राणायाम मना करता है, क्योंकि आलू खाओगे गोल गोल हो जाओगे फिर मुश्किल आएगी। तो हम तो लौकी खाएंगे, करेला खाएंगे, टमाटर खाएंगे, कुछ और खाएंगे, आलू दूसरों को खिलाएंगे, वो भी आलू के रूप में नहीं चिप्स बना के। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, 1,90,000 गांव, हर गांव में एक एक घर में ये चिप्स बनाने का काम अगर हम करवा सके और उसकी मार्केटिंग और पैकेजिंग कोई एक संस्था अपने हाथ में ले ले, एक मदर इंडस्ट्री बने, उसके नीचे गांव की छोटी छोटी गृह उद्योग काम करें, तो बहुत बड़ी फतेह, बहुत बड़ी विजय हम कर सकते हैं। तो आलू नहीं बेचेंगे, चिप्स बेचेंगे। इसी तरह का और एक उदाहरण देता हूं, भारत के 400,000 गांव में कपास होती है, 400,000 गांव, और जो कपास होती है ना वो कपास हम कई बार सीधे निर्यात कर देते हैं, कपास की गांठ बनाते हैं, गांठें निर्यात हो जाती हैं। हम नीति बनाएंगे वो ये कि कपास निर्यात नहीं होगी, कपास का सूत बनेगा, सूत से कपड़ा बनेगा, कपड़ा निर्यात होगा। कपास बिक जाती है 12-15 रुपए किलो, और कपड़ा बनाकर बेचो ना तो वही कपड़ा बिकता है 300-350 रुपए किलो, किलो के हिसाब से बात कर रहा हूं। जो कपास हम 12-15 रुपए किलो में बेच देते हैं, उसी कपास का कपड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार में 350 रुपए किलो में बिकता है, तो हम सीधे कपड़ा क्यों नहीं बेचे। और भारत का कपड़ा तो ऐसा अद्भुत होगा, हाथ से बना, हाथ से कता, दुनिया लट्टू है इस कपड़े पर। पूरी दुनिया के यूरोप और अमेरिका के बाजार में आप झूठ मूठ को ये कह दो कि ये कपड़ा हाथ से बना है और हाथ से बुना है, आप जो कीमत मांगोगे वो देने को लोग तैयार हैं, क्योंकि हाथ से बने कपड़े को पहनने का और हाथ से बुने कपड़े को पहनने का सैकड़ों साल से वो भूल गए हैं, क्योंकि मशीन का बना कपड़ा पहनने को मिलता है और मशीन से ही वो बुनता है। तो अमेरिका और यूरोप में लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है हाथ के बुने कपड़े को खरीदने के लिए। हमें वही करना, 400,000 गांव में हम चरखे चलवा सकते हैं, सूत बनवा सकते हैं, खादी बन सकती है, और वो खादी दुनिया भर के देशों में निर्यात होकर लाखों करोड़ों रुपए देश की आमदनी बढ़ा सकती है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि ये 400,000 गांव में खाली सूत बने, कपड़ा बने, इसी काम में 15 करोड़ लोगों को जिंदगी भर के लिए रोजगार मिल सकता है, 15 करोड़ लोगों को। आप सोचो, एक तो बेरोजगारी भी खत्म हो हमारी। तो ध्यान में दिलाना चाहता हूं वो आपको ये कि हम कपास निर्यात कर रहे हैं तो देश की बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और रोजगार का निर्यात कर रहे हैं। अगर हम कपास से कपड़ा बना रहे हैं तो देश की समृद्धि बढ़ा रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं और बाहर से रोजगार का आयात कर रहे हैं। इसी तरह का और एक उदाहरण देता हूं, हमारे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पर अन्न पैदा होता है, गेहूं चावल चना दाल मटर, कई बार सरकार के पास बफर स्टॉक में बढ़ जाता है तो दूसरों को वो निर्यात कर देते हैं, गेहूं निर्यात कर देते हैं, कई बार कुछ और निर्यात कर देते हैं। हम जो नीति बनाएंगे वो ये कि किसी भी देश को निर्यात करना पड़े अगर बफर स्टॉक बढ़ गया तो, बफर स्टॉक बढ़ने का माने रखने की जगह नहीं है और वो गेहूं सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए उसका निर्यात करके कुछ पैसा कमा लिया जाए। तो हम गेहूं निर्यात नहीं करेंगे, गेहूं का आटा बनाएंगे, आटा निर्यात करेंगे, गेहूं के आटे में से मैदा निकालेंगे, मैदा निर्यात करेंगे, गेहूं के आटे में से मैदा निकलने के बाद सूजी निकालेंगे, सूजी का निर्यात करेंगे। एक ही गेहूं में से तीन चीजें बना के हम निर्यात कर सकते हैं, और गेहूं निर्यात होता है 10-11 रुपए किलो और आटा बिकता है 26 से 30 रुपए किलो, तो 11 रुपए किलो की चीज से अगर 26 रुपए किलो का भाव मिलता है तो 11 रुपए किलो की क्यों बेचें, हम तो 26 रुपए किलो की बेचेंगे। और आटे को ऐसा बनाएंगे आरोग्य आटा जैसा, उसमें गेहूं है, चना है, जव है, फिर उसमें बाजरी है, फिर ऐसे 9 तरह के अनाज मिला के जो दुनिया के देशों ने कभी खाया नहीं, कभी स्वाद भी नहीं चखा, वो तो दीवाने हो जाएंगे इस आटे के। इसमें कैल्शियम भी भरपूर है, आयरन भी भरपूर है, और दुनिया भर के लोगों को कैल्शियम और आयरन की पूर्ति के लिए जो गोलियां खानी पड़ती हैं, ये आटा उन गोलियों को खत्म कर देगा। अंत में उन गोलियों को बनाने वाली कंपनियां भी झक मार के यही आटा बेचेंगी, गोलियों को खत्म करना पड़ेगा। तो हम हमारे देश को गांव के स्तर पर कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं, और एक उदाहरण देता हूं। हमारे देश में 1,00,000 से ज्यादा गांव में टमाटर पैदा होता है, टमाटर की चटनी बन सकती है, सॉस। अब टमाटर बिकता 12-15 रुपए किलो, टमाटर की चटनी बिकती है 200 रुपए किलो, मालूम है, मैगी हॉट एंड स्वीट चिली सॉस, और वो बिकती है ये कह के इट्स डिफरेंट। उसका डिफरेंस पता है क्या है, 3 महीने पुरानी सड़ी गली है, यही है डिफरेंस उसका। घर में हम टमाटर की चटनी ताजा बना के खाते हैं, वो 3 महीने पुराना होता है, और वो 200 रुपए किलो बिक सकता है, टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा है। तो जो जो देश में टमाटर वाले गांव हैं, उन सब जगह टमाटर की चटनी बन सकती है और ये घर में बन सकती है, इसके लिए कोई दूसरा बड़ा उद्योग लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह देश में अंगूर होता है, इसी तरह देश में 2,000 से ज्यादा चीजें गांव में जो होती हैं, उनको पक्का माल बना के ही बेचना है, कच्चा माल नहीं बेचना। एक और उदाहरण देता हूं, गन्ना हमारे देश में करीब करीब 4,00,000 गांव में होता है, जितने गांव में कपास होती है उतने में गन्ना होता है, और गन्ने का हम जो है ना रस निकाल के अभी चीनी बनाते हैं, और चीनी बहुत घाटे का सौदा है। चीनी की मिलों को चलाने के लिए सरकार को हजारों करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है, तब भी चीनी मिलें घाटे में रहती हैं, और इतने घाटे में रहती हैं कि किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं दे पाते वो उसी समय जिस समय गन्ना खरीदते, इतनी बुरी हालत है चीनी मिलों की। जो सरकार सब्सिडी देना बंद कर दे तो सारी चीनी मिलें ध्वस्त हो जाएं एक मिनट में। कारण जानते हैं क्या है, गन्ने का रस निकालना और उससे गुड़ बनाना ये सबसे आसान तकनीकी है भारत में, लेकिन गन्ने का रस निकाल के उसका चीनी बनाना ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है भारत में, बहुत जटिल है। गन्ने का रस निकाल के जब चीनी बनाते हैं 23 तरह के तो जहर उसमें मिलाने पड़ते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, और वो जहर मिलते मिलते वो चीनी नहीं रहती, जहरी हो जाती, और वो जहर खा खा के हम अपनी डायबिटीज बढ़ाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है, और तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो बजाय इसके हम इतना सा करें कि गुड़ बने और गुड़ शक्कर बने, एक होता गुड़ और एक होता गुड़ शक्कर, जिसको कई कई गांव में गुड़िया शक्कर भी कहते हैं, और एक होता बूरा, बूरा तो आप सब जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांड जिसको कहते हैं, तो बूरा है, गुड़िया शक्कर है और गुड़ है, ये तीन उत्पाद पूरी दुनिया में भारत के डिमांड है इनकी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले इजराइल की एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, बहुत रोचक। इजराइल की एक कंपनी है, वो मिठाई बनाती है, मिठाई बनाने के लिए उनको कुछ वो चाहिए, मीठी चीज चाहिए, तो वो मीठी चीज का विज्ञापन करते हैं कि किसी देश के पास हो तो हमको दो। तो उनका विज्ञापन पता है कैसे आता है, वो कहते हैं हमको एवोपरेटेड शुगर केन जूस चाहिए। ये शब्द फिर से सुनो ध्यान से, एवोपरेटेड शुगर केन जूस चाहिए, इसका सीधा मतलब है गुड़ चाहिए। एवोपरेटेड माने जिसमें से पानी निकल गया, और जिस शुगर केन जूस में से पानी निकल गया तो बचेगा क्या, गुड़ ही तो बचेगा। तो वो सीधे नहीं कहते कि गुड़ चाहिए, वो कहते हैं वो ऑपरेटेड शुगर केन जूस चाहिए। उनकी वेबसाइट पे उन्होंने डाल रखा है। मैंने कई किसानों से कहा कि ये ऑपरेटेड शुगर केन जूस नहीं बना सकते, कहने लगे भैया ये तो अपने बस की बात नहीं है, हम नहीं बना सकते। मैं पूछा क्यों, उन्होंने कहा ये तो कुछ बड़ी भारी चीज है, इसको बनाने के लिए तो बहुत बड़ी मशीन लगेगी और करोड़ों रुपए लगेगा, बैंक हमको कर्जा नहीं देती, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम तो नहीं दे सकते। तो मैंने कहा गुड़ दे सकते हो, उन्होंने कहा हाँ ये तो दे सकते, जितना मांगो उतना दे सकते, 1 किलो 10 किलो 20 किलो 100 क्विंटल 200 क्विंटल 1 टन 2 टन 1000 टन जितना बोलो उतना गुड़ दे सकते हैं। मैंने कहा भैया ये एवोपरेटेड शुगर केन जूस का माने ही गुड़ है। कहने लगे अच्छा, मैंने कहा हाँ ये अंग्रेजी का घन चक्कर है बस और कुछ नहीं। हमारे किसानों को अंग्रेजी में बड़े बड़े शब्द बोलो तो उनको लगता है ये तो बड़ी भारी आफत है, और सीधे सीधे कहो गुड़ बनाना है वो तुरंत बना देंगे। और ये गुड़ इसराइल को चाहिए, और जो खरीदने वाली कंपनी है ना उन्होंने रेट दिया है कि हम 65 रुपए किलो से लेकर 170 रुपए किलो तक खरीद सकते हैं। 65 रुपए किलो से लेकर 170 रुपए किलो तक खरीद सकते हैं, हमको कोई दे, बस शर्त इतनी है कि ऑर्गेनिक हो, माने उस गन्ने को पैदा करने में यूरिया न डाला गया हो, डीएपी न डाला गया हो, बस इतनी सी बात है। तो हम तो कर सकते हैं ये काम, बस इसके लिए कानून बदल करना है। आप बोलेंगे कानून क्या है, अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहली चीनी मिल लगी थी इस देश में और चीनी का उत्पादन अंग्रेजों ने शुरू कराया था, उस समय उन्होंने शुगर के लिए कानून बना दिया था। कानून ये है कि किसान कई इलाकों में गुड़ नहीं बना सकता, कानूनी पाबंदी है उस पर। आपको सुन के धक्का लगेगा कि भारत में 17 राज्यों में ये कानून है कि किसान कानूनन गुड़ नहीं बना सकता, जो वो बना रहे हैं वो सब गैर कानूनी है, और अंग्रेजों के जमाने का कानून है ये, और अंग्रेजों ने सोच सोच कर उस इलाके में ये कानून लगवाया जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, क्योंकि उनको चीनी मिल के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना तभी मिलेगा जब गुड़ ना बने, तभी वो बचेगा, नहीं तो बचेगा क्यों। तो उन्होंने ये स्वार्थ के लिए कानून बनवा दिया, और इस कानून से वो 150 साल अपनी पूर्ति करते रहे, चीनी यहां बनाते रहे और इंग्लैंड और यूरोप में बेचते रहे, क्योंकि उनको चीनी ही खाने की आदत है, और हमारे किसान गुड़ बनाने से वंचित हो गए। हमको ये कानून बदल देना है, और राज्य स्तर पर यह कानून बदला जाएगा, यह केंद्र का नहीं है, राज्यों के स्तर का कानून है। तो राज्यों में यह कानून बदलवा दें, हर किसान को छूट हो कि वो अपना गन्ना पैदा करे, गुड़ बनाए, बूरा बनाए, खांड बनाए, गुड़िया शक्कर बनाए, जहां चाहे बेचे। अगर ग्लोबलाइजेशन विदेशी कंपनियों के लिए हो सकता है तो ग्लोबलाइजेशन किसानों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। विदेशी कंपनियों को पूरी छूट है इस देश में कि वो कुछ भी बनाएं और कुछ भी बेचें और कहीं भी ले जाएं, तो ये छूट किसानों को क्यों नहीं हम दे सकते कि वो गुड़ बनाएं, गुड़िया शक्कर बनाएं, बूरा बनाएं, जहां चाहें वहां बेचें। और कितना बड़ा रोजगार पूरे देश में हो सकता है, 4 लाख गांवों में गन्ना होता, ध्यान रखिएगा इस बात को, करोड़ों किसानों को रोजगार हम इस काम में दे सकते। इसी तरह से छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े गहरी महत्व की। एक दो बात और समझाता हूं। हमारे भारत में बहुत सारे किसान फल की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती करते हैं, और हर साल हमारे देश में 60,000 करोड़ रुपए का फल और सब्जियां सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे किसानों को छोटी छोटी समितियां बनाकर, समूह बनाकर, ये जो फल और सब्जियां सड़ रहे हैं, ये सड़ने वाले फल और सब्जियों को ही प्रोसेसिंग करवा दिया जाए, तो 60,000 करोड़ की आमदनी तो ऐसे ही होती है देश को। और इसी काम के लिए पतंजलि फूड पार्क बना, सारे देश में ऐसे 10-20-50-100-200-500 पतंजलि फूड पार्क अगर हो जाए, और 60,000 करोड़ का फल और सब्जियां जो सड़ के बर्बाद हो रहा है इस देश में, वो उनमें आने लगे और उनमें डिब्बे बंद होके, पैकिंग होके दुनिया और देश में बिकने लगे, तो किसानों के लिए कितना बड़ा रोजगार और समृद्धि देश के लिए कितनी, और स्वावलंबन कितना। मक्का होता ना, मक्का, मक्के का कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचा जाता है, और लूट रहे हैं हमको विदेशी कंपनियां, तो घुसे हुए हैं इस बाजार में, उनको मालूम है कि भारत के लोगों को मक्का पसंद है, तो मक्के का वो जो फूला जैसा बनाते हैं जिसको वो कॉर्नफ्लेक्स करते हैं, वो भी पसंद होगा तो वो बना के खिला रहे हैं। मक्का हमसे ले रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी हमको ही खिला रहे हैं। मक्का हमारा वो लेते हैं 7-8 रुपए किलो, और कॉर्नफ्लेक्स हमको खिला देते हैं 150-200 रुपए किलो का।
का, चौलाई का, सबका बन सकता।
अब ये कॉर्नफ्लेक्स हम क्यों नहीं बना सकते जो विदेशी आके कर रहे हैं इस काम को। भारत के जितने गांवों में मक्का होती है, 60,000 से ज्यादा गांवों में मक्का बाजरा होता है, जिन जिन गांवों में मक्का होता है बाजरा होता है, वो सभी घरों में ये कॉर्नफ्लेक्स बनाने का गृह उद्योग चलाया जा सकता है। लाखों करोड़ों माताओं बहनों को काम देके देश के लोगों को कॉर्नफ्लेक्स उपलब्ध कराया जा सकता है। और विदेशी बेच रहे हैं 150-250 रुपए किलो, हम तो उसको दे सकते हैं 35-40 रुपए किलो, कीमत में सस्ता, क्वालिटी में अच्छा, और ऑर्गेनिक बना के बेचे तो दुनिया का हर देश खाने को तैयार है और खरीदने को तैयार है। मैं एक दिन देख रहा था कॉर्न फ्लेक्स का दुनिया का बाजार पता है कितना बड़ा है, $50 अरब का। $50 अरब, एक अरब में 100 करोड़ होते हैं, एक डॉलर में 50 रुपए, $50 अरब का कॉर्न फ्लेक्स का बाजार है पूरी दुनिया में। ये पूरे बाजार पर भारत अकेले कब्जा कर सकता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की हम मक्का पैदा कर सकते हैं कोई नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि मक्के के लिए जो भूमि चाहिए वो भारत में सबसे अच्छी है, और मक्के को जो बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें चाहिए वो भारत में आसानी से उपलब्ध है। ऐसे ही गेहूं का हो सकता है, गेहूं का दलिया बना के सबको खिलाया जा सकता है, जौ का बना के कॉर्नफ्लेक्स वो खिलाया जा सकता है, जब चौलाई का बना के खिलाया जा सकता है, सब तरह के अनाजों का प्रोसेसिंग करके सारे दुनिया को हम खिला सकते हैं। मैं अंत में आपको कृषि क्षेत्र में इतनी सी बात कर रहा हूं कि खाली कृषि उत्पादन को स्वावलंबन की तरफ हम ले जाएं, सिर्फ कृषि उत्पादन को, और गांव में गृह उद्योग शुरू करा दें। एक दिन तो मैं हिसाब लगा रहा था कि भारत में एक साल में जितना गेहूं का आटा खाया जाता है और दुनिया भर में एक साल में जितना गेहूं के आटे से पाव रोटी और डबल रोटी बनाई जाती है, इसको दोनों को जोड़ लिया जाए और इसका आटा बनाने का काम भारत के हर गांव में शुरू कर दिया जाए। 20 करोड़ परिवार हैं तो 20 करोड़ चक्कियां अगर गांव में दे दी जाए, बांट दी जाए, पत्थर वाली, जिसको हम सब चलाएं, अपना पेट कम करें, अपना वेट कम करें, चक्की चलाएं, आटा बनाएं, उस आटे को पैक करके दुनिया भर में बेचें, ये अकेला उद्योग पूरे भारत को स्वावलंबी बना सकता है, अकेला उद्योग, इतनी ताकत है इसमें। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ें, भारत को डीजल और पेट्रोल में भी हम स्वावलंबी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? देखो भैया, डीजल और पेट्रोल जब जलता है और जो ऊर्जा वो पैदा करता है, उसी ऊर्जा को पैदा करने का एक दूसरा विकल्प भी है पूरी दुनिया में हजारों साल से, और उस विकल्प को कहते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये LPG जो है ना, डीजल पेट्रोल का ही विकल्प है। LPG एक गैस है जो डीजल पेट्रोल की मदद से बनती है। इसी के बिल्कुल समानांतर एक और गैस है जो दुनिया भर में आजकल उपयोग की जा रही है, उसका नाम है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो CNG है ये जमीन में स्वतंत्र रूप से पैदा होती है, और LPG जो है वो डीजल और पेट्रोल की मदद से बनती है। आज हम हमारे देश का डीजल पेट्रोल का खनन शुरू करें और ढूंढ ढूंढ के भारत के इलाकों को चिन्हित करें, तो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भरपूर भंडार हमारे पास है, हम LPG भी बना सकते हैं, डीजल पेट्रोल भी बना सकते हैं। हमने तो अभी तक खनन किया नहीं है, और किया है तो वो निजी कंपनियों के स्वार्थ के लिए बलिदान कर दिया है। परम पूजनीय स्वामी जी आपसे कह रहे थे ONGC भारत सरकार की कंपनी है, माने आपकी और मेरी कंपनी है, माने आपके टैक्स के पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से चलने वाली पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। उसने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके खोजा कि यहां तेल है, यहां गैस है, लेकिन सरकार ने वो तेल और गैस खोज के किसी निजी कंपनी को दे दिया कि अब तुम बेचो इसको भारत में और दुनिया में, तो वो मुनाफा निजी कंपनी के खाते में जाने वाला है। तो जो काम ONGC ने किया वो काम ONGC आगे भी कर सकता था। खोजने का काम जो कंपनी कर सकती है वो बना के बेचने का भी काम कर सकती है, उसमें कोई बड़ी तकनीकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोजने में ज्यादा बड़ी तकनीकी लगती है, बनाकर बेचने में उतनी बड़ी तकनीकी नहीं लगती। तो वो काम पूरा ONGC को दे दिया जाए और ONGC का मुनाफा माने देश का मुनाफा, तो इस मामले में ONGC हमको पूर्ण स्वावलंबी बना सकती है। और ONGC भारत की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दुनिया की बड़ी कंपनियों में उसकी गिनती होने लगी है। उसके पास पैसा है, पूंजी है लगाने के लिए, वैज्ञानिक दिमाग है, तकनीकी है, हुनर है, कौशल है, सब कुछ है, बस सरकार को नीति बदलने की जरूरत है। और इसी तरह से मैंने कहा CNG गैस दो तरह से मिलती है, एक तो जमीन के नीचे से और दूसरा गाय के गोबर, भैंस के गोबर को सड़ने के बाद जो गैस होती है वो भी यही है। बस हम उसको केमिस्ट्री में जो है ना मीथेन के नाम से जानने लगते हैं। मीथेन माने सीएनजी ही होती है। गोबर गैस जो है ना, गोबर गैस जिसको आप सुनते रहते हैं, वो मीथेन है। वो मीथेन को ही हम सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसको कंप्रेस करना है, एक विशेष दबाव पर उसको सिलेंडर में भर के इस्तेमाल करना है, और वो वही काम कर सकती है जो एलपीजी कर सकती है। तो भारत में 48 करोड़ जानवर हैं। अगर 10 करोड़ जानवर हर साल कटना बंद हो जाए तो जितना गोबर और मूत्र है उससे हम ये गैस भी बना सकते हैं, और गोबर गैस के प्लांट गांव-गांव लगाकर खाद के लिए बढ़िया सामान बना सकते हैं, और गैस को सिलेंडर में भर के गाड़ियां चला सकते हैं। डीजल पेट्रोल की एक बूंद हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारे देश में जानवरों का गोबर इतना पर्याप्त है, अगर उनका कत्ल बंद कर दिया जाए उस गोबर से खाद भी बनेगी और गैस भी बनेगी। गैस को सिलेंडर में भर के घर में भी जलाएंगे, गाड़ियों में भी चलाएंगे। आपको मालूम है मुंबई में, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे वाहन चलना शुरू हो गए। इसी तरह भारत के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। ये जो पानी है ना, पानी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अपने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए खेमका जी हैं, उन्होंने पानी को तेल की तरह से इस्तेमाल करने लायक बना लिया है। माने पानी को डीजल और पेट्रोल की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इतनी बड़ी खोज भारत में हो चुकी है। अब पानी तो पर्याप्त है अपने पास, भगवान का दिया हुआ बारिश का पानी अगर एक एक बूंद हम समेटना शुरू कर दें तो इतना भंडार है पानी का जो समाते नहीं बनेगा। मैं एक दिन अभ्यास कर रहा था तो पता चला कि जितनी हमारे पानी की जरूरत है उससे अभी भी 500 गुना ज्यादा पानी भगवान हमको देता है। जब कम बारिश होती है तब भी ये स्थिति है, बस हम उसकी बूंदों को समेटते नहीं है। जो पानी आपकी छत पर गिर रहा है उसको आप घर में इकट्ठा कर लो, जो पानी खेत में गिर रहा है उसको खेत में इकट्ठा कर लो, जो पानी गांव में गिर रहा है वो तालाब में इकट्ठा कर लो। एक एक बूंद पानी की अगर हम समेट लें तो पीने का पानी पर्याप्त है, खेती के लिए पर्याप्त है, उद्योग के लिए पर्याप्त है, और उसके बाद बचेगा उसको डीजल पेट्रोल की तरह से जलाएंगे अपनी गाड़ियों में। हमें किसी अरब देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम तो पूर्ण स्वावलंबी हो जाएंगे। तो भारत में स्वावलंबन के रास्ते बहुत हैं, बस इसमें ध्यान देने की बात है। चिकित्सा क्षेत्र में हम स्वावलंबी हो सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी जी ने जब से ये योग प्राणायाम का अभियान शुरू किया है, सारे देश को और दुनिया के विशेषज्ञों को अब ये विश्वास हो गया है कि बिना गोली खाए, बिना इंजेक्शन लगाए जिंदगी की हर बीमारी ठीक की जा सकती है। कैंसर से लेके, डायबिटीज से लेके, अर्थराइटिस से लेके, ब्रोंकाइटिस से लेके, ब्रोंकियल निमोनिया से लेकर, ट्यूबरकुलोसिस से लेके, गंभीर से गंभीर बीमारी और हल्की से हल्की बीमारी सब मिलाकर अगर योग और प्राणायाम से ठीक हो सकती है तो चिकित्सा स्वावलंबन का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। आयुर्वेद का भी अगर हम इलाज करें तो उसमें दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है और वैद्य जी की कृपा दृष्टि अपने ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यहां तो योग और प्राणायाम करें तो ना वैद्य जी की दरकार है ना आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की भी दरकार है। हम तो अपनी सांस पर ही नियंत्रण करके पूरा चिकित्सा स्वावलंबन अपना और दूसरों का कर सकते हैं, और 50 लाख करोड़ का दुनिया का जो साम्राज्य बन गया है दवा कंपनियों का, इसको ध्वस्त कर सकते हैं और रावण की की तरह से जला सकते हैं इसको। इसी तरह से शिक्षा में स्वावलंबन हम ला सकते हैं। हमारे भारत स्वाभिमान के हर गांव में एक योग शिक्षक अगर हो गया तो 6,38,365 गांव में योग की कक्षा लगेगी 1 घंटे, और 1 घंटे शिक्षा का काम चले। हर हमारा योग शिक्षक शिक्षा में भी चला जाए, और विद्यार्थी जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास फीस नहीं, उनको हमारा योग शिक्षक पढ़ाए, और पढ़ाई वो पढ़ाए जो मैकोले वाली नहीं हो, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो मैकोले की पढ़ाई पढ़ेंगे, अगर हमारे स्कूल में आएंगे तो वो भारत स्वाभिमान की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो उनको योग सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, शरीर विज्ञान बताएं, थोड़ा आयुर्वेद सिखाएं, थोड़ा नेचुरोपैथी सिखाएं, जीवन में काम आने वाली विद्याएं अगर देना शुरू करें तो मैं तो गारंटी देता हूं कि कोई भी उन स्कूलों में नहीं जाएगा, सब आपके यहां भर्ती हो जाएंगे आके, क्योंकि गांव के विद्यार्थियों को जो ज्ञान चाहिए वो किसी स्कूल में नहीं है। आप उनको बताओ ऊसर जमीन को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, गोबर गोमूत्र कैसे उपयोग कर सकते हैं, खेती का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उत्पादन बढ़ा के रोजगार कैसे निर्माण होता है, ये शिक्षा देना अगर आप शुरू कर दो तो ये सब स्कूल थोड़े दिन में वीरान नजर आएंगे। क्योंकि इन स्कूलों में यही शिक्षा नहीं दी जा रही है। फालतू शिक्षा देके समय खराब कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी हो सकते हैं, चिकित्सा में स्वावलंबी हो सकते हैं। और मैं तो वो दिन का सपना देख रहा हूं कि हमारा एक एक योग शिक्षक किसी गांव के लिए न्यायाधीश का काम करे, न्यायकर्ता बने, न्यायदाता बने। क्योंकि जब आप गांव में ये सब काम शुरू कर देंगे, योग सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, विद्या देंगे, दान देंगे शिक्षा का, तो गांव वाले वैसे ही आपको मान लेंगे कि आप ही सबसे वरिष्ठ हैं। और आप जब सबसे वरिष्ठ हो गए तो आप न्याय भी करने लगेंगे। गांव वाले अपने मामले लेकर आपके पास आएंगे, फैसले देना शुरू कर दीजिए। और फैसला देने के लिए धर्म के 10 लक्षण याद रखिए, महर्षि दयानंद जी की पुस्तक ले जाइए, यहां से पढ़ते रहिए। उन धर्म के 10 लक्षणों के आधार पर बड़े बड़े मुकदमों का फैसला दे सकते हैं। और अगर ज्यादा गंभीर मुकदमे आए तो याज्ञवल्क संहिता हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, वो पढ़ लीजिए। भारतीय न्याय शास्त्र है, मनुस्मृति है। न्याय के लिए भारत में इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं कि जिनका थोड़ा सा अभ्यास करके आप बड़े बड़े मामलों को सुलझा सकते हैं। एक हमारे भारत स्वाभिमान के बहुत बड़े समर्थक, सहयोगी और शुभेक्षक हैं, उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े। कर्नाटक में रहते हैं, धर्मस्थल में। मैं सबसे पहली बार जब उनको मिला था तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा कि मैं न्याय करता हूं। मैंने कहा न्याय करते हैं मतलब, तो उन्होंने कहा मैं धर्माधिकारी हूं, न्यायाधिकारी हूं। इधर आसपास के हजारों गांव के लोग आते हैं मेरे पास, अपने मामले लेकर आते हैं और वो मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, मैं उसमें न्याय देता हूं। एक तरफ वादी रहता है, एक तरफ प्रतिवादी रहता है। तो मैंने कहा आप किस आधार पर न्याय करते हैं, आईपीसी के आधार पर, सीआरपीसी के आधार पर, सीपीसी के आधार पर? तो हंसने लगे, कहने लगे ये न्याय तो मैं जिंदगी में नहीं कर सकता, मैं तो भारत में जो धर्म की परिभाषा है, जो नैतिकता की बातें हैं, उनके आधार पर फैसले करता हूं। वादी भी खुश रहता है, प्रतिवादी भी खुश रहता है, सत्य के आधार पर। फिर मैंने उनसे पूछा अब तक आपने कितने मुकदमों के फैसले किए हैं, तो मुझे कहा कि कम से कम 20,000 तो कर ही चुका हूं, उससे ज्यादा ही होंगे। अब एक न्यायाधिकारी 20,000 मुकदमों का फैसला कर सकता है अपने जीवन में, तो मुझे लगता है हमारा एक एक योग शिक्षक अगर तैयार हो गया तो गांव में छोटे मोटे मामलों से लेकर गंभीर मामलों तक न्याय में हम दक्ष हो जाएंगे और लोगों को न्याय दिला पाएंगे। ये आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी धरी रहे एक तरफ, हम तो गांव में समानांतर न्याय व्यवस्था स्थापित करके स्वावलंबी हो सकते हैं, चिकित्सा में, न्याय में, उद्योग में, व्यापार में, कृषि में। और अगर सब स्तरों पर स्वावलंबन आ गया तो देश तो फिर खड़ा हो जाएगा, और ये देश अगर फिर खड़ा हो गया तो दुनिया को एक आदर्श बन जाएगा। नगर हमारे खड़े हो ही जाएंगे। नगरों की एक 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 दो छोटी मोटी समस्याएं हैं। नगरों में बिजली कमी है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए एक ही वाक्य कहता हूं कि भारत में बिजली की कमी 1% भी नहीं है, बिजली की व्यवस्था में खोट है। हमारे यहां क्या होता है, बिजली बनती है किसी बड़े बिजली घर में और उसका फिर ट्रांसमिशन होता है हजारों मील दूर, हजारों किलोमीटर दूर। जैसे बिजली बनती है एक जगह, आप सभी जानते हैं, और बिकती है जाके मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है और इसमें हजारों किलोमीटर की यात्रा तारों के द्वारा होती है। और आप जानते हैं बिजली एक ऐसी ऊर्जा है जिसका ट्रांसमिशन नहीं करना चाहिए, जहां पैदा हुई वहीं उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा लॉस होता है। आपको मालूम है हमारे देश में 33% ट्रांसमिशन लॉस है। सरकार कहती है कि 1,00,000 मेगावाट बिजली हम पैदा करते हैं हर घंटे, इसमें 33,000 मेगावाट बिजली खर्च हो जाती है ट्रांसमिशन में। मैंने सोचा कि अगर ये ट्रांसमिशन में खर्च होने वाली बिजली को ही बचा लें तो 1,33,000 मेगावाट बिजली आज हमारे पास है और बिजली की एक यूनिट की भी कमी नहीं है फिर तो। तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, इसका बहुत सामान्य तरीका है कि बड़े उद्योगों को और रेल को लगने वाली बिजली अलग कर दो और गांव के घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली अलग कर दो। गांव के घरों में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 230 वोल्ट की है, रेलवे और बड़े कारखानों में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 11,000 वोल्ट की है। 11,000 वोल्ट की बिजली बड़े बिजली घरों से दे दो रेल को और कारखानों को, और गांव के 230 वोल्ट की बिजली के लिए छोटे बिजली घर बना दो, 10-10, 20-20, 50-50 गांव का समूह बनाकर, और उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करना। वो खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा, स्विस बैंक में जो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा जमा है, जिस दिन वो भारत में आ जाएगा उसके 1% के खर्चे में भारत में 33,000 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। तो हम बिजली में भी शहरों को स्वावलंबी बना सकते हैं, पानी में भी शहरों का स्वावलंबन हो सकता है, सड़कों में भी शहरों को स्वावलंबी बना सकते हैं। हर स्तर पर यह देश स्वावलंबी हो सकता है, क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने इस देश को इतना दिया है, दिल खोल कर दिया है, जी खोल कर दिया है, बस वो दिखाई देना चाहिए और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हम में आनी चाहिए और उसके हिसाब से तकनीकी और विज्ञान का विकास हमें करना है और वैसे संकल्पवान लोगों को खड़ा करना है जो इस काम को कर सकें। तो आप सभी वो संकल्पवान लोग हैं जो आने वाले समय में इस देश में खड़े होंगे और शायद भारत स्वाभिमान ही इस काम में अगुवाई करेगा, लीडरशिप लेगा और भारत देश को जो भी जरूरत की तकनीकी है, जो भी जरूरत के संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने में, नीतियां बदलवाने में, कानून बदलवाने में और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी भूमिका सबसे अग्रणी होने वाली है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत स्वाभिमान की ज्योति जले, हर दिल में ये प्रकाश पैदा हो जाए और सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर और हम इस काम में सफलता पाएं, ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार, बहुत धन्यवाद।